में कुछ मैंने खुद कासिया का जो है इंतखाब किया। अलबत्ता दोनों ही अपनी जगह पे जो है वो सारी खुतबे बल्कि कहा जाए कि नजब ला के मुफीद हैं, लेकिन खुतबे कासिया के अंदर कुछ ऐसी वारद हैं कि जो हमारे माशरे के लिहाज से और हमारे मौजूदा हालात के लिहाज से भी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हमसे मरबूत हैं और हमारे मसाइल को बयान करती हैं। खुतबे कासिया जो है नजब ला का एक तूलानी तरीन खुतबा है शायद, या ये कह सकते हैं कि तूलानी तरीन खुतबों में से एक है। और इस खुतबे को कासिया जो कहा जाता है वो इसकी बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि इसमें इमाम अलैहि सलाम ने इसका एक माना जो है वो जब इंसान बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो है किसी मतलब को जो है बयान करे तो उसको जो है इस माना में कासिया कहा गया। अगर से और भी बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि क्यों उसको खुतबा कासिया कहा जाता है, लेकिन किसकी एक वजह इमाम अलैहि सलाम ने इस शिद्दत को अख्तियार किया है और बहुत जिससे कहते हैं जलाल के साथ खुतबे को जो है वो इरशाद फरमाया। इस खुतबे के अंदर तकरीबन जो 20 के करीब हम कह सकते हैं मुख्तलिफ यानी महवर हैं इसके और मुख्तलिफ इसको जो है पार्ट्स में जो है तकसीम कर सकते हैं। हर कुछ दिनों तक इंशा अब ये मालूम नहीं है कि एक खुतबा जो है वो 3 दिन में हम उसको डिस्कस कर पाएंगे, या अगर मेरे जहन में था कि शायद ये 5 दिनों 5 रातों तक यानी जो है शब 23 तक अगर हम इसी को शायद कंटिन्यू करें तो शायद बेहतर हो और उसके मतालब जो है वो बयान हो सके। तो अगर हम देखा कि 3 दिनों में 3 रातों में ये तमाम नहीं होता तो इसको जो है फिर मजीद 2 रातों तक और कंटिन्यू करेंगे, फिर दोबारा अपने जो मौजू था सूरह तगाबुन का उसको पलट जाए। तो उसके 20 अगर हम महवर बयान करें कि इसके अंदर इस खुतबे के अंदर इमाम अलैहि सलाम क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं। सबसे पहला जो उसका बख्श है वो जहाँ से स्टार्ट होता है वो खुदा की हमद और सिपास है, और खुदा ने जो शैतान को अपनी बारगाह से जो निकाला उस हवाले से कि जो तासब और तकबर जो शैतान ने इख्तियार किया उसके हवाले से उसको जो शैतान को बारगाह इलाही से तर्द किया गया और निकाल दिया गया उसके वाले से कुछ गुफ्तगू है पहले बख्श के अंदर। उसके बाद दूसरा जो बख्श है दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर इंसान की जो खिलकत है उसका तस्करा है और उसको जो ज़मीन से खाक से मिट्टी से जो बनाया गया उसकी जानिब इमाम अलैहि सलाम इशारा करते हैं, और इसकी वजह भी यही है कि इसके अंदर वो जो रूह है तवाज़ो जो पाया जाता है कि इंसान जब इशारा होता है कि इंसान को खुदा ने मिट्टी से खल किया तो उसके अंदर जो तवाज़ो है उसके अंदर जो यानी दर मुकाबले शैतान को तकब्बुर और उसके मुकाबले में इस यहाँ पे उस रूह तवाज़ो को जिंदा करने की कोशिश की जाती है कि इंसान अपने आप अपनी हकीकत की तरफ गौर करे कि इंसान को खुदा ने इस मिट्टी से खल किया और उसके जो प्रोसेस है खल करने का वो तमाम चीज़ें बयान होती हैं। और फिर शैतान की जो आकिबत है उसका जो अंजाम हुआ कि गुरूर और तकबर की वजह से उसका जो अंजाम हुआ उसकी जानब इमाम अलैहि सलाम इशारा करते हैं। इसके बाद जो तीसरा इसका जो उसके किस्मत में आते हैं उसके जो बख्श में आते हैं तो वहाँ पे फिर तमाम लोगों को एक तरह से वॉर्न किया जाता है और होशियार किया जाता है कि शैतान के दाम में शैतान के जाल में ना फंसें और उसकी जो वो राह जो उसने चली है और जिस बात को उसने फॉलो किया है उसको उस पर चलने की कोशिश ना करें। चौथा जो उसका पार्ट है इस खुतबे का उसके अंदर उन लोगों की मजम्मत की जाती है कि जो इस तकब्बुर और गुरूर के जाल में फंस जाते हैं और वो जाहिलियत की जो आदाब और रसूमात हैं इस्लाम से कबल के जो हालात हैं उसकी तरफ पलट जाते हैं इस्लाम आने के बाद और उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं उसी जाहिलियत वाली जो सोच है उसके मुताबिक जो उनके अफकार हैं उसकी इमाम अलैहि सलाम मजम्मत करते हैं। उसके बाद अगले उसके अंदर इमाम अलैहि सलाम एक उमूमी एक तरह से दोबारा से वॉर्न करते हैं कि उन लोगों की वो लोग जो कि हाकिम हैं और तकबर के साथ और इस्तिकबार के साथ जो कि जिनको हक नहीं है कोई बड़ाई उनके लिए हासिल नहीं कोई ऐसी चीज़ उनके पास नहीं है कि जो जिस पे वो इतराएं गुरूर करें, लेकिन जो है गुरूर के हालत में और तासुब के साथ जो है वो हुक्मरानी करते हैं और बगैर इसके कि उनको ये हक हासिल हो उनकी इतात और पैरवी करने से के बारे में बयान किया है कि उनकी इतात ना की जाए। छठे बख्श के अंदर इमाम अलैहि सलाम इबरत हासिल करने को कहते हैं कि उन लोगों की, उन उम्मतों से जो पहले गुजर चुकी हैं, उनसे उनके हालात में इंसान गौर करके उस पर गौर फिक्र करे और सजा इबरत हासिल करे, और देखे कि वो लोग जो तकबर में मुब्तला हुए और उसके नतीजे में किस तरह से उस बेचारगी के अंदर, उस हालत के अंदर, जिसे कहते हैं तरसनाक जो हालत है, जिसके ऊपर उनको तरस खाना चाहिए, ऐसी हालत में उन तकबर का नतीजा हुआ और उन्हें तवाज़ो को छोड़ दिया और तकबर को अपनाया, उसके नतीजे में हालत हुई। और इसके मुकाबले में जो अम्बिया थे उन्हीं उम्मतों के अंदर, वो इन्हीं मुस्तकबरीन के मुकाबले में यही मगरूर जो हुक्मरान है, या उस जमाने उस माशरे के जो मगरूर अफराद हैं, मुतकबर अफराद हैं, उसके मुकाबले में जो उस जमाने के अम्बिया थे हर हर अपने कौम के अंदर, वो किस तरह से तवाज़ो के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से इंसानियत की जो पीक है, उसकी जो औज है, उसकी चोटी पर जो है वो उस सआदत पे पहुँचते हैं। इसके बाद इशारा होता है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र होता है इस खुतबे के अंदर, कि किस तरह से उस सादगी के साथ हज़रत मूसा और उनके भाई हारून को खुदा हुक्म देता है कि जाओ और फिरौन के दरबार में उससे मुलाकात करो और उनको जो है वो दीन की तरफ और उस हकायक की तरफ और रसालत की तरफ जो है वो बुलाना और उनको जो है दावत देना और लोगों को उसके जुल्म से और उसके जोर से जो है निजात दिलाने की बात करना कि इनको छोड़ दिया जाए, तमाम चीज़ें जो मूसा अलैहि सलाम की दास्तान में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी जिस सादगी के साथ ये लोग जाते हैं उसका यहाँ पे इमाम अलैहि सलाम तस्करा करते हैं। उसके बाद अगले थोड़ा आगे बढ़ के दोबारा से कुछ हज की जानब इशारा करते हैं कि हज के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस एक ऐसी सरजमीन का इंतखाब किया गया जो एक खुश्क सरजमीन है और काबे की जो बिना है उसको, जो इमारत है उसको भी इंतहाई सादा एक इमारत है, और उसको इमाम खुदा ने जो अपनी इबादत के लिए जो एक उसका मरकज़ बनाया ताकि दोबारा से इंसानों को जो है सादगी की तरफ और तवाज़ो की तरफ जो है वो दावत दी जाए और तकब्बुर से जो है वो रोका जाए, कि इस दीन के अंदर जो असास है उसको बताया जाए कि ये इंसान अपने आप को मुतवाज़ रखे खुदा के मुकाबले में और तकब्बुर से जो है वो दूर रखे, यानी हत्ता उसकी जो इबादत हैं उसके अंदर भी जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको सादगी के ऊपर और तवाज़ो के ऊपर रखा गया। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अगले बख्श में आके दोबारा शैतान के मुख्तलिफ वो जाल जो है उनके मुताबिक उसके तरफ इशारा करते हैं, ख़ास तौर पे जुल्म सितम की तरफ इशारा करते हैं और साथ ही मुख्तलिफ जो हमारे वज़ाइफ जो हमें इबादत के अंदर जो बयान किए गए, नमाज और रोज़ा और ज़कात वगैरह, ये किस तरह से शैतान के इन जालों से में फंसने से जो हमें रोक सक बचा सकते हैं और उसके मुकाबले में हम दफा कर सकते हैं अपना। इसके बाद जो है इसी खुतबे के अंदर दोबारा से गुरूर और जैसे कह सकते हैं तासुब के जो सरचश्मे हैं उसके जो रूट्स हैं उसके जाने में सलाम इशारा करते हैं कि उसकी रूट्स क्या हैं। उसके बाद उस तासुब की, या जिसे कहते हैं, जिसके बाद में जिक्र होगा कि तासुब का क्या मतलब है, तो वो तासुब जो कि एक पॉजिटिव है जो होना चाहिए वो कौन सा तासुब है, उसका इमाम सलाम जिक्र करते हैं, उसके आसार का जिक्र करते हैं। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम दोबारा से पिछली उम्मतों के हवाले से उनकी वाकयात में गौर करने और उनसे जो है वो दर्स इबरत लेने की बात करते हैं और उसके उनके अहवाल के अंदर इंसान मुताला करे और गौर करे। उसके बाद जो एक अहम तरीन मतलब है इस खुतबे के अंदर वो इत्तेहाद और वहदत के हवाले से और इख्तलाफ और तफरीके के हवाले से, कि इत्तेहाद और वहदत की जो बरकत हैं और उसके आसार हैं वो क्या हैं और इख्तलाफात और तफरीके के जो नुकसान हैं वो क्या हैं। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम वारिद होते हैं इस मतलब के अंदर के इसी मतलब को, जिसको एक कुल्ली तौर पर इमाम पहले बयान करते हैं कि इत्तेहाद और वहदत की जो बात है अब इसके मुकाबले में तफरीका, और फिर इसी चीज़ को जो है वो ख़ास मवारिद के अंदर अप्लाई करके बताते हैं कि देखो बाज़ मराहिल मसलन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आल के अंदर, उनकी नस्ल के अंदर जब लोगों ने इख्तलाफ किया तो उनका क्या हाल हुआ और उनके जो हम की जो है जिससे इबरत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के बारे में उनकी मदद करते हैं, उनकी सना करते हैं और किस तरह से वो जामे इस्लामी के लिए एक जो है इस्लामिक सोसाइटी के लिए एक नेमत और रहमत की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद दोबारा रसूल खुदा से पहले के जो हालात थे उसका कुछ तस्करा करते हैं कि वो कौन से हालात थे, वो कौन सी जाहिलियत का ज़माना था, और फिर दोबारा लोगों को उसी जाहिलियत की तरफ पलट जाने से इमाम अलैहि सलाम कहते हैं कि इंसान इससे बहुत ज़्यादा आगाह रहे और होशियार है कि दोबारा ऐसा ना हो कि रसूल खुदा के आने के बाद दोबारा इंसान जाहिलियत की तरफ पलट जाए। इसके बाद कुछ अपने ज़माने के हालात को बयान करते हैं कि वो नाकिसीन व कासितीन व मारकीन के जो हालात थे, कि जिन्होंने पहले बैत की या जिन्होंने बैत नहीं की, या फिर जो खवारिज का है जिन लोगों से इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग की, और अपने कुछ मसाइल और मुश्किल का जिक्र करते हैं। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जो नस्बत है रसूल से, कि मुझे क्या नस्बत हासिल थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम को क्या नस्बत थी रसूल खुदा से, क्या मकाम था उनका और क्या मंजिलत थी इमाम अलैहिस्सलाम की इस पूरे इस निज़ाम के अंदर, इस्लाम के अंदर, और रसूल खुदा से जो उनकी नस्बत हासिल थी उसका जिक्र करते हैं। और उसके बाद एक ख़ास मोजज़े का जिक्र करते हैं कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर हुआ, वो जो दरख्त का जो वाकया, एक दरख्त आता है और आके आपकी नबूत की और रसालत की जो गवाही देता है उसका जिक्र करते हैं। और फिर अहले बैत का कुछ तस्करा है जिसको आखिर में बयान करके इस खुतबे का जो इख्तिताम होता है। तो ये पूरा एक कुल्ली एक जायजा है इस खुतबे का, इसके अंदर जो अहम तरीन जो महवर है इस खुतबे के अंदर क्या है। तो अगर आपने गौर किया हो तो इसके अंदर जो अहम तरीन मतलब है वही तकब्बुर, और जिसे कहते हैं तासुब और गुरूर, ये जो चीज़ें हैं कि इसको इमाम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस मतलब के ऊपर, और इसका जो सेंट्रल आइडिया से कह सकते हैं इस खुतबे का इसी के गिर्द है। खूब हतमन ये वो चीज़ है कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा अहम समझा, क्योंकि ये खुतबा आखिरीन खुतबों में से है इमाम अलैहिस्सलाम की, तकरीबन जिसे कहते हैं 40 हिजरी के अंदर ज़ाहिरन किस तरह से बयान किया है बाज़ मौरखीन ने, कि ये बिल्कुल आखिरी अय्याम का जो खुतबात में से है, और कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने हत्ता शायद इसमें जिक्र भी किया कि वो तमाम तीनों जंगों के बाद, हत्ता जंग जमल और जंग सिफीन और जंग नहरवान के बाद, अब आखिरी जंग के लिए इमाम अलैहिस्सलाम तैयारी कर रहे थे, उस ज़माने का ये खुतबा है कि जिसके फ़ौरन बाद इमाम अलैहिस्सलाम के तकरीबन शहादत वाक़ई होती है। यानी ये वो खुतबा है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चूंकि आखिरी अय्याम का है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इमाम अलैहिस्सलाम तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी का एक खुलासा जो है उसको यहाँ पे, वो जो अहम तरीन नुकता है जिसको हमारे लिए हिदायत का सर चश्मा समझते हैं और हिदायत के लिए ज़रूरी समझते हैं, उसको यहाँ पे बयान करके जाना चाहते हैं कि हम इससे इस्तेफादा कर सकें। तो सबसे पहले इसके जो पहला जो पार्ट है यहाँ से शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लबिसल इज्ज़ वल किब्रिया, के खुदा की हमद हो कि किस बात पर, इसके उसी को कि उसने जो है वो इज्जत और किब्रियाई का जो रिदा है, जो लिबास है, उसने पहना है। यानी एक तरह से एक ऐसी इसको तशबीह देते हैं कि जैसे इज्जत और किब्रियाई जो एक, अगर उसको लिबास की सूरत में इंसान जो है फ़र्ज़ करे, तो खुदा ने इस इज्जत और किब्रियाई का जो लिबास है वो पहना है। वख्तार हमारे नफ्स से ही दून खल के, और ये ऐसी चीज़ है इज्जत और किब्रियाई कि जो फ़कत और फ़कत खुदा ही को, खुदा ने अपने ही लिए उसको जो है करार दिया, और किसी और को इस रिदा को और इस पहनने से, यानी दूसरों के लिए इसको मना ममनू करार दिया कि किसी को और कोई हक नहीं है कि वो अपने आप के लिए इज्जत को करार दे, कहे कि मैं मेरे लिए इज्जत है, या मेरे लिए जो है किब्रियाई है, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरे अंदर तकब्बुर है। ये तमाम चीज़ें जो इंसान को इस तरफ ले जा सकती हैं कि वो सोचे, ज़रा सा भी ख्याल उसके जहन में आए कि मैं सर कोई चीज़ हूँ खुदा के मुकाबले में कुल्लन। तो इस चीज़ को रद्द करने के लिए इमाम फरमाते हैं कि ये चीज़ फ़कत खुदा से मखसूस है और उसी को जेब देती है। वजा अलहुमा हिमन व हरमन अला गैरही, और इसको खुदा ने असलन ममनू करार दे दिया बाकी और किसी के लिए। इसकी तौज़ीहात इंशाल्लाह फिर बाद में जिक्र होंगी। इसके बाद फरमाते हैं कि और जिसने भी इन दोनों सिफतों में इससे मुकाबला करना चाहा, खुदा ने इसको मलून करार दिया कि ये इस हद तक खुदा को ने अपने लिए करार दिया है कि किसी और को इख्तियार हासिल नहीं कि वो इन चीज़ों को अपने लिए करार दे। फरमाते हैं कि उसके बाद इसी तरह से खुदा ने फिर मलाइका से इम्तिहान लिया, सुम्मा इख्तबर बिजाले का मलाइकतहुल मुकर्रबीन, और खुदा ने इम्तिहान लिया अपने जो मुकर्रब मलाइका थे किसके जरिए, इसी मतलब के जरिए से इम्तिहान लिया, ले यमीज़ अल मुतवाज़ईन मिनहुम मिनल मुस्तकबरीन, ताकि देख ले कि इनमें से कौन जो है वो मुतवाज़े हैं और कौन जो है वो मुस्तकबिर हैं और तकब्बुर करने वाले हैं। वक़ाल सुबहानहू, उसके बाद खुदा फरमाता है कि वहुवल आलिमु बिमुज़बरातिल कुलूब, वो जो दिलों के राज और उसके जो असरार हैं उससे बाखबर है, ऐलान करता है, फरमाता है कि मैं मिट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ। उन मलाइका से खिताब करते हुए कहता है कि इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون الا ابلیس. پھر وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی اس آیات کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ لوگ بھی اس خطبے کو دیکھنا چاہیں تو 192 نمبر کا خطبہ ہے، خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے، اگر آپ اس کی فہرست میں دیکھنا چاہیں نجیب اللہ کی، اور اگر وہ متن آپ کے سامنے ہو تو شاید زیادہ بہتر استفادہ کر سکیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر ان آیات کے امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ خدا کس طرح سے مٹی سے انسان کو خلق کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے خلق کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، اور پھر کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ جب میں ایسا کروں تو پھر تم لوگ سجدے میں چلے جانا، اور ملائکہ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں سب کے سب مگر ابلیس. خوب، ابلیس جو ہے وہ جو سجدہ نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ اعترضت الحمیہ فافتخر علی آدم بخلقہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تعصب جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس تعصب کے وجہ سے انکار کر دیتا ہے اور افتخار کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کہ اس نے اپنی تخلیق کے مادے سے آدم پر فخر کرتا ہے، اور اپنی اس چیز کے اوپر کہ خدا نے اس کو آگ سے بنایا ہے، اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے. افتخر علی آدم بخلقہ وتعصب علیہ لاصلہ، اپنی اصل کے اوپر کہ میں تو نار سے ہوں، آگ سے ہوں، اور آدم جو مٹی سے. فعدو اللہ امام المتعصبین، بس یہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کا دشمن اور امام المتعصبین ہے، کہ جو سب سے پہلے جو لیڈر ہے، اگر کوئی متعصبین کا جو لیڈر ہے کہ جو تعصب رکھتے ہیں اپنی اسی چیز کے اوپر کہ ہم، ہماری یہ اصل و نصب ہے، ہمارے حسب و نصب ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی تعصب کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، تو ان لوگوں کا جو امام ہے، ان کا جو لیڈر ہے، وہ کون؟ شیطان اور ابلیس ہے. اور وسلف المستقبرین الذین وضع اساس العصبیہ، کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اصلاً جو بنیاد جو تعصب کی اور بنیاد جو عصبیت کی اور تکبر کی رکھی ہے، یہ اسی شیطان نے رکھی. نازع اللہ رضا الجبریہ، اور خدا سے تنازع کیا، کس چیز میں جھگڑا کیا اس نے؟ جس طرح خدا نے کے لیے عزت اور کبریائی خدا کے لیے تھی، اس شخص نے، یعنی اس ابلیس نے خدا کے مقابلے میں اس چیز میں آیا کہ میں بھی جیسے عزت رکھتا ہوں، جیسے کہ میرے لیے بھی کبریائی ہو، اس دعویٰ کر کے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. حقیقت شیطان نے کیا خدا کے مقابلے میں آ گیا، اور اساس عصبیت کی اور بنیاد عصبیت کی اور تعصب کی بنیاد شیطان نے رکھی. وہ نازع اللہ، خدا سے جھگڑا کیا، خدا سے نزاع کیا، رضائے جبریت کے اندر، یہ جو رضائے جبریت تھی، اس کے اندر خدا سے کہا کہ میں، یہ رضا مجھے چاہیے، یعنی زبردستی جو چیز کے لیے نہیں تھی، سزاوار نہیں تھی، اس کو جو ہے اوڑھنے کی کوشش کی. ودرا لباس التعزز وخلق نعذ التذلل، اور جو چیز اس کے لیے، اور وہ جو عزت و جلال کا جو لباس تھا، جیسے اس نے جو ہے اپنے تن کرنا چاہا، اور توازو کا جو نقاب تھا اس کو اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کی کہ میں اس توازو کو نہیں چاہتا، بلکہ میں اس عزت اور کبریائی کو چاہتا ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ترون کیف صغرہ اللہ بتکبر ہی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا کس طرح سے شیطان کو جسے کہتے ہیں ذلیل کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، کہ کس طرح سے خدا نے شیطان کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے چاہا کہ میں خدا کی اس کے بریائی کے مقابلے پر آؤں اور اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں لے کر آؤں، تو خدا نے کس طرح سے اس کو چھوٹا کیا، اس کی تحقیر کی. وَدَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ، اور اس کو جو ہے وہ اس بلندی پہ جہاں پہ وہ فائز تھا، کس طرح سے اس کو گرا دیا. اس سے پہلے کہ شیطان یہ کام کرتا، وہ ملائکہ کے صفوف کے اندر تھا، ان کے صفوں کے اندر تھا، اور عبادت، خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، اور یہ سب کہ یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ملائکہ ہی میں شمار کیا جاتا تھا. لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس کو جو ہے خدا نے، جب اس نے ایسا کام کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو وَوَدَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْهُورًا وَأَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، تو اس کو دنیا میں جو ہے ملعون قرار دیا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آتش جہنم کا خدا نے انتظام کی. تو یہ ایک خلاصہ شروع میں امام علیہ السلام یہاں پہ ان چند جملات کے اندر، جیسے ہم دیکھو خدا کے سے جس اس کو شروع کرتے ہیں خطبے کو، اور پھر اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس کبریائی اور جسے کہتے ہیں عزت اور اس چیز کو اپنے لیے سمجھا کہ میں عزیز ہوں، یہ چیز میرے لیے ہے، مجھے زیب دیتی ہے، اور میں اس کے مقابلے میں، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے آگ سے بنایا ہے، مجھے نار سے بنایا ہے، اور حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے. تو ये गलत, जिसे कहते हैं गलत फहमी के अंदर इंसान वो मुबतला हुआ। अब यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम जिस खुतबे के अंदर शुरू में फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस चीज़ के ज़रिए से, इस तमाम वाक़े के ज़रिए से जब हुक्म दिया कि तुम सजदा करो और उसको मलाइका के सामने रखा, इससे पहले कि ये काम होता है जिस तरह से बयान हुआ कि इस वक्त शैतान भी उन्हीं की सफ़ में जो है उसको समझा जाता था कि ये भी मलाइका में से। इस मतलब को जब पेश किया गया तो उसके ज़रिए से इमाम फरमाते हैं कि इख्तिबार किया गया, यानी इम्तिहान लिया गया उन, हत्ता उन मलाइका मुकर्रबीन का। अब मलाइका मालूम है कि वो खुदा का इम्तिहान लेने का मतलब ये नहीं कि खुदा को कोई चीज़ मालूम ना हो और इम्तिहान के ज़रिए से फिर इल्म हासिल करना चाहे, बल्कि नहीं, वो दूसरों के लिए जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे वाज़े करना चाहता है कि देख लो इसमें से मालूम हो जाए कि कौन जो है वो मुती हैं, कौन जो है वो इतात करने वाले हैं और कौन इतात करने वाले नहीं है, ताकि मालूम हो जाए कि कौन जो अब तक अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा है और दूसरे उसको समझ रहे हैं कि ये बहुत खुदा का जो है बात गुजार एक बंदा है, मालूम हो जाए कि उसकी हकीकत क्या है। तो फरमाते हैं कि सुम इख्तबर अबजाल का मलाइकतुल मुकर्रबीन लयमीज़ अलमुतवाज़ईना मिनहुम मिनल मुस्तकबिरीन, ताकि जो मुतवाज़े हैं वो अलग हो जाएं और मुस्तकबिरीन जो हैं अलग हो जाएं। मुस्तकबिर किसे कहते हैं कि जिसके अंदर किब्रियाई ना हो, बड़ाई ना हो और वो अपने लिए ज़बरदस्ती इस चीज़ को करार देना चाहे, उसको हम कहते हैं मुस्तकबिर। जिस तरह से हम हमारी इस्तलाह के अंदर भी जब कहा जाता है कि ये इस्तकबारी कुव्वतें हैं, यानी जिन जो वाकई जिनके पास बड़ी नहीं है लेकिन जो अपने आप को बड़ा समझती हैं और इस चीज़ को दूसरों पर थोपने की कोशिश करती हैं और दूसरे भी इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं और उनकी जो इताअत में चले जाते हैं, यानी एक चीज़ जो उनके जेब नहीं देती थी, जो उनके लिए वाकई उनके लिए शायस्ता नहीं है, उसको लिए अपने करार देते हैं। तो खुदा यहाँ पे इस तमाम वाक़े के अंदर चाहता है कि खुदा ने चाहा कि उनका इम्तिहान लिया जाए और ताकि वाज़े हो जाए कि कौन मुतवाज़े है और कौन मुस्तकबिर। फिर खुदा ने उनसे कहा कि इस तरह से वो खुदा जो कि हाल उनके दिलों से हाल से बाखबर था, चीज़ को बयान किया कि मैंने जब ये काम करूंगा और इस आदम को खल करूंगा और इस तरह से इस प्रोसेस से गुजरेगा, उसके बाद जब उसके अंदर मैं अपनी रूह को फूकूंगा तब तुम लोग इसके इसके जान उसकी तरफ जो है वो सजदे गुजार हो जाए। अब यहाँ पे गर्चे सबको मालूम है कि ये धरती के जो सजदा है वो इस वजह से है कि इस चीज़ को जो है इस मखलूक को नस्बत जो है खुदा की जानब दी जा रही है, खुदा इसको अपने से मनसूख करना चाहता है और इसका मकाम इस वजह से है और बिलाखिर हुक्म खुदा है, तो बाकी तमाम जो मलाइका हैं वो सजदा करते हैं लेकिन इबलीस जो है वो सजदा करने से इनकार कर देता है। क्यों? एतरज़तुल हमीजा फफ्ता खराल आदम खल्की, जो तासुब था वो उसके ऊपर जो है हावी हो जाता है और उसकी वजह से वो इस काम करने से इनकार कर देता है। वतअस्सब अलैहि असलही फअदुवुल्लाह इमाम अलमुतअस्सबीन, इस इमाम कहते हैं ये खुदा का दुश्मन है। अब ये तमाम चीज़ें हमको बताई जा रही हैं कि फ़कत इबलीस से मरबूत नहीं है कि हम कहेंगे चूंकि इबलीस ने काम किया बस वो खुदा का दुश्मन ही नहीं, हर वो शख्स जो कि इस रास्ते पर चलता है और शैतान की इस जिसे कह सकते हैं कि इस मतलब के अंदर पैरवी करता है वो सब जो है वो खुदा के दुश्मन करार पाएंगे। फादुबुल्लाह इमाम अलमुतअस्सबीन, लेकिन ये वो है जो कि इमाम मुतअस्सबीन है कि जिसने इस चीज़ को असलन बुनियाद रखी और खुदा से इस मतलब के अंदर जो है झगड़ा किया। बस इंसान भी अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं पे वो देखे कि ये चीज़ आ रही है और उसके अंदर तकब्बुर आ रहा है, उसके अंदर गुरूर आ रहा है, उसके अंदर असबियत है, उसके अंदर असबियत किसे कहते हैं, तासुब जिसकी बात हुई थी, तासुब किसी चीज़ की हिमायत को कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि इस शख्स के अंदर अपने कबीले का बहुत ज़्यादा तासुब पाया जाता है, अपनी कौम का जो है बहुत ज़्यादा तासुब पाया जाता है, तो क्या मतलब होता है, नहीं अपनी उसकी हिमायत जो है इसके दिल में बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हिमायत किस माना में क्यों बुरी, इसको जो है बुरे सेंस में जो है वो इसका नेगेटिव जो पहलू कहाँ पर आता है, उस वक्त आता है कि जब इंसान इस हिमायत के अंदर बगैर किसी हिसाब किताब के, यानी ये ना देखे कि वो हिमायत जो हो रही है, जिसकी हिमायत जो अपने कबीले की, अपने कौम की, अपनी पार्टी की, अपने किसी भी उन लोगों की जिसकी हिमायत करना चाहता हूँ, अपने खानदान वालों की, अपने घर वालों की, वो उस हक की बिना पर है या ना, सिर्फ और इस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरा कबीला है, वो मेरी पार्टी है, इसलिए इसकी हिमायत है। अगर तो ये हिमायत इस वजह से हो कि चूंकि ये मेरी पार्टी है, मेरा कबीला है, मेरा खानदान है, तो इसको हम कहते हैं वो तासुब जो कि नेगेटिव है, कि एक हिमायत जिसकी कोई असास ना हो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो चूंकि मेरा जो इनसे ताल्लुक है, इसको कहा जाता है कि ये तासुब जो है वो बुरा तासुब और इस किस्म की हिमायत बुरी है, क्योंकि इंसान इसके अंदर हक और बातिल का ख्याल नहीं रखता, मीज़ान इसके अंदर हक और बातिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अब जब इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा कि चूंकि ये मेरी पार्टी है, मेरा कबीला है, तो मैं मुझे इसकी हिमायत करनी है, तो अगर वो बातिल पर भी होगा तो खुद ब खुद ये साथ साथ उसके बातिल के पीछे चला जाएगा, तो अगर वो गुमराह होगा तो ये भी गुमराह हो जाएगा, अगर वो जो है राह बातिल पर कदम रखेगा तो खुद ब खुद ये भी अपनी उस हिमायत और उस ताल्लुक की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से जो गलत मोहब्बत है انہی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا اور اس گمراہی کے اندر پڑ جائے گا. اس لیے تعصب کو جو ہے وہ شدید طریقے سے جو ہے وہ اس کے جو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے کے ساتھ اس لیے جو ہے وہ پھر لنک ان کا ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بلا وجہ ان چیزوں کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اس خاندان سے ہوں بس میرے اندر یہ بڑائی میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, مجھے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے. یعنی اس چیز کو غلط چیز کو کہ جس کو کوئی جو کوئی ملاک نہیں ہے بڑائی کا, اگر کسی کا انسان کا جو ہے کسی خاندان سے تعلق ہے فرض کریں, یہ کون سا جو ہے وہ بڑائی کا ملاک ہے. ملاک جو ہے اگر کسی کے اوپر فوقیت کا ہے تو حق کو جو ہے باطل پہ جو ہے وہ فوقیت کا معیار ہے, نہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ فوقیت کا معیار یہی ہے اس وقت. حق جو ہے اس کو باطل کے اوپر فوقیت حاصل ہے, باقی کسی اور چیز کو نہیں ہے. ہر وہ چیز جو خدا سے ریلیٹڈ ہو جائے اس کو دوسرے چیزوں پہ جو ہے فوقیت حاصل ہے. یعنی اصل چونکہ فوقیت جو ہے اصل جو کبریائی, جس طرح سے پہلی جملے میں امام فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے عزت اور کبریائی کی جو ردا ہے اس نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر دیا. اس کے علاوہ ہر کسی کو, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو جو بھی مخلوقات ہوں انسان ہو جن ہو ملائکہ ہوں کسی کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا. ایک حریم جو ہے اپنی بنائی ہے اس کو جو اپنے لیے کیا قرار دیا, جعلہم حمن و حرمن علی غیر, اس کو جو ہے جسے حرم ہے ایک ایسی باؤنڈری ہے کہ جس کے اندر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دی, صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہے عزت و کبریائی. مگر یہ کہ خدا خود کسی کو جو ہے وہ عزت دے دے, جس طرح سے اس آیت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ عزت جو ہے وہ خدا کے لیے, کیونکہ خدا خود جو ہے اگر اس کو اپنے رسول اور مومنین کو دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے, جس طرح سے خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مومن رسول کا اور مومنین کے لیے بھی جو ہے قرار دیا. لیکن اصل جو چیز ہے یہ اصالتاً جو ہے خود سے جو ہے کس کے لیے مخصوص ہے, فقط خدا اور خدا کے لیے مخصوص ہے. اب اگر یہ انسان آئے اور اس اپنے اپنی کسی انہی قسم کے جو غلط معیارات ہیں جو باطل معیارات ہیں اس کی وجہ سے سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور میرے اندر اس سے اس کی وجہ سے جو فخر کرنے لگے اور کبریائی اس کے اندر آ جائے, تو اس کی یہاں پہ امام علیہ السلام مذمت کرتے ہیں اور پھر شیطان کے اس پورے واقعے کو بیان کر کے بات بتاتے ہیں کہ اس کی اصل اور اساس جو ہے وہ کہاں سے. اس کے بعد جو دوسرا جو بخش ہے کہ انسان کی خلقت کے اوپر دوبارہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن نُورٍ يَخْتَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَيَبْهَرُ الْعُقُولَ رُعَاؤُهُ وَطِيبًا يَأْخُذُ الْأَنفَاسَ أَرْفُهُ وَلَفَعَلَهُ. اس کے بعد جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو اس طرح سے, یعنی جو امتحان لیا ہے وہ کس طرح سے لیا ہے, خدا نے امتحان کے اندر جو ایک اہم پہلو ہوتا ہے جو خود اچھا بہتر ہے کسی جملات کے اندر بیان ہو تو زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ امتحان اس طرح سے لیا خدا نے کہ آدم علیہ السلام کو جو خلق کیا تو مٹی سے خلق کیا, اور اس مٹی سے جو جس کی خصوصیات بھی قرآن میں بیان ہوئی کس قسم کی مٹی ہے اور وہ کیا ہے, یعنی ایک انتہائی پست قسم کی چیز سے جو ہے خلق کیا اور پھر جو ہے وہ امتحان لیا. اگر خدا چاہتا تو ان کو بہت زیادہ جسے کہ نور سے بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا تھا, ایک ایسا نور ہوتا کہ جس کو دیکھ کے جو ہے انسانوں کی جو ہے وہ جو بھی دیکھنے والا تھا وہ اصلاً اس کی اس حد تک روشنی ہوتی کہ سب انسان جو ہے اس کو دیکھ کے جو حیرت کے اندر جو ہے پڑ جاتے, اس حد تک جو انسان کو اپنی طرف وہ اٹریک کر لیتا. وہ نور اس طرح بھی خدا کر سکتا تھا, وجہ بھر العقول روا ہو, اور اسی طرح اس طرح سے ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یعنی عقلیں جو ہیں اس کا جمال اتنا زیادہ ہوتا, اتنی خوبصورتی اس کی اتنی زیادہ ہوتی کہ عقلیں جو ہیں مبہوت ہو جاتی, اور اس کے اندر اتنی زیادہ خوشبو ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اصلاً اس کو اپنے بالکل کیپٹیویٹ کر لیتی, اس کو اپنے مسخر کر لیتی وہ خوشبو. اس طرح سے بھی خدا کر سکتا تھا, لیکن کیا کرتے ہیں, ولوفا لذلت لہ الاناق خاضعتا, اگر لیکن ایسا وہ خدا کرتا تو یہ تمام جو خود بخود کیا ہوتا ہے سب لوگ جو ہیں وہ اس کے سامنے اس طرح سے جھک جاتے اور اس طرح سے اس کے سامنے مطیع ہو جاتے خدا کے اس فعل کے مطابق کہ وہ جو اختبار کرنا تھا جو امتحان لینا تھا وہ فلسفہ ہی ختم ہو جاتا. یعنی جب اس چیز اس طرح سے واضح ہو جاتی کہ ہاں یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے, تو پھر وہ جو امتحان خدا کو لینا مقصود تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جو ظاہراً تم سمجھو گے کہ یہ تو بہت زیادہ ایک پست چیز ہے, اس کا مٹی سے بناتا ہوں, تم لوگوں کو جو ملائکہ اور اس طرح سے جو شیطان تھا جو جن تھا اس کو جو خدا نے نار سے بنایا تھا, ملائکہ اصل کلن مجرد مخلوقات ہیں, تو ان یہ اگر اپنی اس چیز میں مبتلا ہونے کا یہاں پہ کیا تھا ایک خطرہ ہے کہ اگر ایک مٹی کے مقابلے میں ایک پست چیز کے مقابلے میں ان کو اطاعت کرنے کا حکم دیا جائے کہ ان کے اس کے مقابلے میں تم اپنا سر جھکا دو, تو یہاں پر امتحان جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. لیکن اگر ایک ایسی مخلوق خدا خلق کرتا شاید حضرت آدم کو بہت زیادہ اس کے اندر واضح طور پر جو نشانیاں ہوتی, تو پھر یہاں پہ امتحان کا جو کانسیپٹ تھا بالکل ختم हो जाता है। और वैसे ही आनाक जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लज़ल्लत लहुल आनाक को खाज़े आतन, तो गर्दनें तो वैसे ही इसके आगे जो है झुक जाती हैं, और इसको देखते ही जो है वो सब लोग कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल वाज़े है, और एक ऐसी मखलूक है जिस जो हमसे बहुत ज़्यादा बालतर है। और फिर मलाइका का इम्तिहान बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, उसके अंदर वो इम्तिहान का जो कॉन्सेप्ट है वही ख़त्म हो जाता है। लखफ़तिल बलवा, बलवा जो था इम्तिहान जो था बहुत खफीफ हो जाता, आसान हो जाता। वलाकिन अल्लाह सुबहानहू यब्तली खल्कहु बिबअद मा यजहलून असलहु तमीज़न बिल इख्तिबार लहुम व नफ्यन लिल इस्तिकबार अनहुम व इबादन लिल खुलिया मिनहुम लिल खुयला मिनहुम। फरमाते हैं कि लेकिन जो असल एक चीज़ जो थी वो यहाँ पे जो असल जिसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है, इम्तिहान, और हर इम्तिहान में ऐसे ही होता है कि एक जो मजहूल, एक जो है जिसे कहते हैं कि एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो मालूम नहीं होता, अगर हर चीज़ इम्तिहान में मालूम हो जाए, यानी फ़र्ज़ करें जो इम्तिहान जो पेपर आप जो किसी तालिबे इल्म से जो इम्तिहान लिया जा रहा है उसके अंदर हर जो चीज़ आने वाली इम्तिहान में वो सब पहले से मालूम हो जाए, जैसे कहते हैं पेपर आउट हो जाए, तो वो पेपर फिर जो है पेपर नहीं रहता, फिर वो इम्तिहान नहीं रहता, फिर एग्जाम नहीं रहता, उसके जरिए से आप किसी का की आजमाइश नहीं कर सकते कि किसको ज़्यादा मालूम है किसको कम मालूम है। इम्तिहान का मकसद क्या होता है कि आजमाइश की जाए, हमारे जो इम्तिहान होते हैं स्कूल्स और कॉलेज वगैरह में, उसका हदफ ये होता है कि लोगों के इल्म का जो है वो उसको परखा जाए कि कौन किस लेवल पर, अगर सब चीज़ें वाजे हो जाएं सामने आ जाएं तो वो जो एक जहालत का जो एक जो चीज़ मजहूल है और मालूम नहीं अननोन जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह से खुदा कर देता तो वो जो फैक्टर था वो इम्तिहान लेने का वही ख़त्म हो जाता, और यही चीज़ जो है वो बाकी जितने भी इम्तिहान हैं खुदा लेता है, फिर इस इम्तिहान से मखसूस नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी बाकी इम्तिहान आते हैं सबके अंदर यही चीज़ है कि एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो मजहूल रखा जाता है, जिससे जो है वो बयान नहीं किया जाता, और उसी के जरिए से इम्तिहान लेना मकसूद होता है कि अगर वो भी वाज हो जाए, मसलन फ़र्ज़ करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने इम्तिहान लिया, फिर इसके बाद उनको उस मंजिलत पर जो है वो पहुँचाया और उनको इमाम बनाया, तो अगर वो जो इम्तिहान था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है ज़िबह कर दिया जाए, अगर पहले से सब चीज़ें वाज हो जाती कि ये तो एक जो है बिलाखिर एक गूसफंद है उसको आना है उसको जो है वो जो फिदिया करार पाएगा और तमाम चीज़ें मालूम हो जाए, तो फिर यहाँ पे कौन सा कमाल रहता है इस इम्तिहान के अंदर, ख़त्म हो जाता है उस इम्तिहान का फलसफा ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ थी अगर खुदा इस तरह से हल कर देता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो सारा इम्तिहान ही ख़त्म है। बहुत सारे लोग इश्काल करते हैं कि जैसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम के खानवादे ने बाकी लोगों ने इतनी जो है वो कुर्बानियाँ दीं, उस प्यास की शिद्दत थी, भूख की शिद्दत थी, तो इमाम अलैहिस्सलाम जो कि खुदा को इतने अजीज़ हैं इतने करीब हैं इमाम खुदा के उनके हबीब के नवासे हैं, तमाम तमाम सिफात जो है खुदा और खुदा के सामने सब कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, तो क्यों खुदा ने जो है यहाँ पे यहाँ पूरी काया पलट जाती है, एक फौज आ जाती है, एक लश्कर आ जाता है और तमाम जो है मसला हल हो जाता है। तो मसला ये था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ाहरी जो है जिसे कहते हैं कि कामयाबी दिलाना तो मकसद नहीं था, इम्तिहान ही इसी जरिए से था, अगर चीज़ें वाज़े हो जाएं और लोगों की गर्दनें, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों की गर्दनें झुक जाएं और उसके मुकाबले में इकरार कर लें वाकई ये तो हमसे बालातर एक चीज़ है, जब सब लोग अपनी आंखों से वाज़े हो जाए, पर्दे हट जाएं, वो जो अननोन जो चीज़ है जो मजहूल जो फैक्टर है जो अननोन फैक्टर वो ख़त्म हो जाए और हर चीज़ सामने आ जाए, तो फिर इम्तिहान ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक बिलाखिर वो फैक्टर जो है यहाँ पे हमेशा इम्तिहान के अंदर रखा जाता है, जो कि यहाँ पे भी था कि खुदा ने इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस तरह से खूबसूरत और उस तरह से नूरानी जो है कोई वजूद के साथ खल्क नहीं किया कि वो चीज़ यहाँ पे फौत हो जाए, ध्यान का फलसफा ख़त्म हो जाए। फरमाते हैं कि वनफ यानि इस्तिकबार अनु व इबाद अनिल ख्याला एमिनहुम, और इसका ये क्यों किया खुदा ने, ताकि असल ये उनकी जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मालूम ना हो पाए कि वो असल क्या है, वो जो रूह है जो इंसान की अंदर पाई जाती है उस रूह का हासिल है कि जिसकी नस्बत जो है खुदा ने अपनी तरफ दी, उसकी वजह से वो अशरफुल मखलूकात जो है करार पाता है इंसान, लेकिन उस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं किया गया। और असल वो जो इम्तिहान का जो चीज़ थी वो यही कौन जो है मुती होता है और खुदा के फरमान की इताअत करता है, जहाँ खुदा बाज़ अहादीस के अंदर इस तरह से जो है उसका मफहूम यह है कि खुदा कहता है कि शैतान ज़ाहिरन खुदा से कहा कि मैं अगर तू चाहे तो मैं तेरी इस तरह से इबादत करूंगा जैसा आज तक किसी ने इबादत नहीं की हो, लेकिन मैं सजदा जो है इस चीज़ को जो है तू मुझसे बरतरफ कर दी, ये मुझसे ना मांग कि मैं उसके सामने जो है वो सजदा करूँ, तो खुदा कहता है कि नहीं मैं ये नहीं चाहता कि यानी जिस तरह से तुम इबादत, मैं चाहता हूँ कि मेरी इबादत उस तरह से की जाए जैसे मैं चाहता हूँ, ना कि बंदा जिस तरह से चाहे, अगर बंदा क्या है कि मैं उस तरह से इबादत करना चाह रहा हूँ जिस तरह मैं खुद चाहता हूँ, इसका मतलब है कि मुतात नहीं करना चाहता, इबादत नहीं करना चाहता, वो अपनी बात करना चाहते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात पर अमल करना चाहते हैं। अगर इंसान को खुदा की इबादत करनी है तो उस तरह से इबादत करे जैसे खुदा ने चाहा है। इंसान हत्ता इबादत के अंदर भी जो भी इस गलत ख्याल के अंदर है, वो लोग हत्ता इबादत भी करना चाहें तो शैतान, ये शैतानी ख्याल है, शैतान की जो है रविश है कि शैतान हर चीज़ के अंदर अपनी मनमानी करना चाहता है, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। तो फिर ये उसके अंदर इताअत कहाँ गई, इसके अंदर इबादत तो कहीं पर भी नहीं आई, इसके अंदर तवाज़ो तो कहीं पर भी नहीं आया। मुश्किल यही शैतान के साथ और उसके फॉलोअर्स के साथ, मुश्किल यही है उसके पैरोकारों के साथ कि वो हर चीज़ के अंदर, उनके अंदर तवाज़ो नहीं होता खुदा के मुकाबले में। दर हकीकत उन्होंने सर नहीं झुकाया होता, इसलिए हर चीज़ के अंदर अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ यूं होनी चाहिए, ये चीज़ यूं होनी चाहिए, ये मसला है बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, ये हुक्म जो है वो कियानूसी अहकाम है और जमाने के लिए नहीं है, तमाम चीजें, ये सारे ख्याल कहाँ से आते हैं, तमाम मुश्किल कहाँ से आती हैं, खन्नास जो आता है जहनों में इसी मुश्किल तकबर की वजह से आता है। इमाम अलैहिस्सलाम क्यों यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि उस माशरे के अंदर जो जमाने के जो हालात हैं, वरना शैतान का किस्सा जो है वो हजारों साल पहले का जो एक चीज़ है खत्म हो चुकी, क्यों उसको दोबारा से इतना ज्यादा जो है इस तुलानी तरीन खुतबे में बार बार इसी मसले पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि रूट बन रही है और जड़ है कितने ही सारे मुश्किल की, कि तकबर जो है, असबियत जो है, इंसान जो है वो वाकई वाकई मानों में जो है खुदा के मुकाबले में मुती ना हो, उसके मुकाबले में हाजिर ना हो, ये असल में सारी बुराई की जो है जड़ बन रहा है। अब इज्तिमाही मामला के भी, इंफरादी जिंदगी के अंदर भी, खुदा से जो ताल्लुक है इंसान के उसके अंदर, हर चीज के अंदर ये जो मुश्किल आ रही है वो यही इसी तकबर की वजह से, इसी तासुब की वजह से, इसी बेजा हिमायत की वजह से अपने खानदान की, कबीले की, इन तमाम चीज़ों की, कि जिसके असास जो है वो हक के अलावा दूसरी चीज़ों। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस मतलब को जब देखते हैं कि ये इतनी मुश्किल का बायस है, इसलिए इतने ज्यादा इस पूरे मसले पर फोकस करते हैं और उस तमाम वाकयात को बयान करते हैं। खैर, फिर इमाम फरमाते हैं कि बस क्यों खुदा ने किया, ताकि इसके जरिए से इस इम्तिहान को लिया जाए और उसके अंदर इस मतलब को जो है पोशीदा रखा गया और खुदा ने हर चीज को यहाँ पे वाजे नहीं कर दिया। हो वलाकिन अल्लाह सुभान व यब्तली खल्क़हु बिबाज़ मा यजहलून असलहु तमीज़न बिल इख्तिबार लहुम व नफ़यन लिल इस्तिकबार अनहुम व इबआदन लिल खुयलाए मिनहुम फ़ातबिरू बिमा काना मिन फ़िल अल्लाह बिइब्लीस। बस ऐ लोगों, तुम लोग इबरत हासिल करो उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ के जरिए से कि जो खुदा ने जो ये तुम इस वाक़े के अंदर जो भी पेश आता है और शैतान इस तरह से सजदा करने से इनकार कर देता है, इससे तुम लोग अपने लिए इबरत हासिल करो। इस अहबत अमलहु तवील, के शैतान के इस अमल की वजह से क्या हुआ, उसकी जितनी भी इबादती थी तवील, जो उसने जो इबादत अंजाम दी थी, सब का सब जो है वो ज़ाया हो गया, एहबात हो गया। एहबात कैसे कहते हैं, बिल्कुल बातिल हो गया, जो जैसे फर्ज करें कि था ही नहीं, उसने किस हद, कितने सालों तक जो है खुदा की इबादत की, हमारी इबादतों से जो कंपेयर करते हैं, हम तो कहेंगे कुछ भी नहीं, यानी असल कोई कंपैरिजन का जो है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इंसान सोचे कि अपनी इबादत को उस इबादत के जाहिरी से जो शैतान क्या करता था और वो भी मलाइका की सफ में जो है वो इबादत किया करता था, उसके मुकाबले में इंसान आके सोचे कि हम भी जो हमारी 50 साल की 100 साल की इबादत है, और उसकी वजह से इंसान के जहन में गुरूर और तकबर आना शुरू हो जाए और अपने आप को दूसरों से बालोतर समझने लगे, बल्कि अपने लिए एक हक का जो है कायल हो जाए खुदा के ऊपर कि हम जैसे हक हकदार हैं जन्नत के और हमें तो ये मकाम मिलना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान इबरत हासिल करे, बे मकान मिन फेल अल्लाह बे इब्लीस, देखे कि खुदा ने इब्लीस के साथ क्या किया, कि जब उसने क्या किया, अहबत अमलहु तवील वजहदहुल जहीद, कि अपने से पूरी जितनी भी उसने जो कोशिशें थी उसको सब कुछ है बर्बाद कर दिया। वकान कद अबद अल्लाह 6,000 सनतिन, शैतान ने 6,000 साल खुदा की इबादत की, 6,000 साल, वो कौन से 6,000 साल,
अब
फरमाते ला युद्रा अमिन सनी सनी ये दुनिया अमिन सनी ये आखिर, कि मालूम नहीं कि दुनिया के 6,000 साल हैं या आखिर, यानी मालूम नहीं, समझा दी नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम का मालूम नहीं, यानी हमें बताना चाह रहे हैं इस चीज को कह के गुजर जाना चाहते हैं कि तुम फर्ज करो 6,000 साल, 6,000 साल हालत दुनिया के हो या आखिरत के, अगर दुनिया के हो तब भी 6,000 साल बहुत बड़े हैं, और अगर आखिरत के हो तो असलन कोई कम कोई सोचा भी नहीं आ सकता, किसी ने उसका जो
आगा
हिसाब
मेरा
लगाया होगा
अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक
जो छह
क्वेश्चन है।
हजार साल अगर हाँ 1 मिनट, किसी को सवाल है शुरू? जी बोले।
जी ये जो इबलीस था अजाजील, जाहिर है इसने बहुत ज्यादा इबादत की थी, तो इसके 7 स्काइज के ऊपर नेम भी थे, किसी आसमान पे इसका नाम आबिद था, किसी पे साजिद था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसके नेम थे, और इसने इतनी ज्यादा इबादत इबादत की थी, तो जाहिर है तो ये इसकी इतनी ज्यादा इबादत पर ये अल्लाह से फेमिलियर तो होगा ना, कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को सजदा करने के लिए कहा, मालूम खुदा को सजदा है, और वो भी जाहिर है आबिद था, और उसको भी ये मालूम होना चाहिए था कि मैं जो हूँ खुदा को सजदा करूँ, ना कि इस मिट्टी के टुकड़े को। तो उसके अंदर वो जो तकब्बुर आया कि मैं तो आग का बना हुआ हूँ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो इतना बड़ा आबिद था, तो उसने और डिफरेंट मलाइका की तरह से क्यों अपने आप को वो नहीं किया? क्योंकि जब सारे मलाइका, क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर है ना 34, वायदा कुलना लिल मलाइकती जदुली आदम फसा जदु, सिवाय इब्लीस के सबने ही सजदा कर लिया, तो वो जो सारे मलाइका थे उन्होंने भी तो अल्लाह की सामने सजदा किया ना हजरत आदम को। तो जब ये इतना बड़ा आबिद था, यानी तो सिर्फ मुतकबिर हो गया इस वजह से, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुतकब्बिर क्यों हो गया, जबकि ये इतना बड़ा आबिद भी था, साजिद भी था, इतना बड़ा इल्म रखने वाला, तो क्या ये खुदा की मार्फत नहीं रखता था? तो ये बजाहिर सिर्फ इसके ये इतने नेम टैग थे कि ये आबिद भी है साजिद भी है, जो इसको सारे आसमानों पर नाम दिए गए थे।
ऐसा ही है। असल मसला ये इमाम अलैहिस्सलाम भी इसी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि जाहिर के अंदर इंसान कभी इससे धोखा ना खाए कि ये शख्स जो है, या इंसान खुद भी अपने आप से धोखा ना खाए कि मैं बहुत ज़्यादा खुदा का इबादत गुजार हूँ, बहुत ज़्यादा नेक हूँ, लोग अच्छी कंपनी के अंदर, अच्छे लोग, मेरा उठना बैठना है सब मुझे अच्छे नाम से जानते हैं। बस ये चीज़ उसको जो है वो गुरूर के अंदर मुबतला कर दे। ये चीज़ जो है वो हमेशा इंसान जो है डरता रहे कि वो शैतान जो कि उस सुफूफ मलाइका के अंदर था, जब उसको ना बचा सकी, क्योंकि इंसान को खुदा ने जब इख्तियार के साथ पैदा किया और जिनों के बिलाकर वो था, मलाइका के अंदर तो नहीं था, वो जिनों के अंदर से था, तो उसके पास जिस तरह से इंसान को इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी रास्ता अपने लिए जो है इंतखाब कर सकते हैं, तो ये शैतान के पास भी ये इख्तियार था कि वो अपने चॉइस से जो है वो उस रास्ते का इंतखाब करें। लेकिन उसने बिलाखिर वो तकब्बुर चूंकि उसके अंदर था और वो चीज़ उसके लिए हल नहीं हुई थी, और दरहकीकत खुदा का इबादत गुजार नहीं था। इन सारा कहने इन सारे जो दास्तान का जो जिससे कहते हैं वो सेंट्रल आइडिया ही यही है कि वो नहीं था ऐसा, और इसी के जरिए से खुदा ने बताना चाहा कि देखो जरूरी नहीं है कि एक शख्स जो है इतना ज्यादा इबादत कर रहा हो, 6,000 साल से इबादत कर रहा है, लेकिन वो वाकई इबादत गुजार हो, नहीं, मुमकिन है उसके अंदर जो है वो चीज़ हल ना हुई हो और वाकई वो मुझे इबादत के लायक नहीं समझता। मुझे तो है बाहर तो सजदा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो अनानियत मौजूद है वो कभी भी जो है सामने आ सकती है। बस इसके जरिए से हमारे लिए इबरत की बात है वो यही है कि इंसान जो है वो चाहे कितना ही ज्यादा जो है इबादतों के अंदर मशगूल हो, हर लम्हे के अंदर उसके जहन में और ये उसके अंदर जो है जिसे कहते हैं ख्याल रहे कि कभी भी जो है वो हम पे ये गलबा हो सकता है, और हम अगर इख्तियार के साथ जो है हमको जो खुदा ने इख्तियार दिया है अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करें, गलत समय चले जाएं, तो कभी भी जो है हम भी बहक सकते हैं। और इसीलिए जो पूरे खुतबे के अंदर बार बार इमाम अलैहिस्सलाम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि होशियार रहो कि शैतान जो है तुमसे
जी
बहुत नज़दीक है। मेरे ख्याल में नहीं, वो इसकी वजह क्या है, आप जो कहना कि क्यों ऐसा हो गया, वजह उसका वो इख्तियार है कि जो खुदा ने इंसान को और जिन्हों को दिया, और चूंकि ये हकीकी मानों में आबिद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक उसका ख्याल था और जोम था कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो ये जब इम्तिहान हुआ तो वो जो अननोन फैक्टर था वो सामने आ गया। इम्तिहान होता है इसलिए जिस तरह से बयान किया कि खुदा ने यहाँ पे जो इमाम अलैहिस्सलाम इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे वो चीज़ जो अननोन खुदा ने रखी थी इस इम्तिहान के अंदर वो यही चीज़ थी ताकि मालूम हो जाए कि उसकी असल क्या है, तो असल जो है यहाँ पे जाहिर हो गई इसी इम्तिहान के जरिए से, ताकि हमारे लिए भी वाज हो जाए रास्ता और सब लोगों के लिए जो है कि इबरत का बायस हो, और फिर जो है लोग इस रास्ते को फॉलो ना करें, और देखते हुए कि शैतान की इबादत जो इन चंद लाइनों के अंदर अभी आएगा, जब वो आसमानों के अंदर उसकी जो इबादत थी ये सब जो है वो खुदा एक लम्हे के अंदर जब जाया हो सकती है, तो हमारी तो उसके मुकाबले में कोई हैसियत ही कोई नहीं है। तो इंसान बहुत ज्यादा इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखे और उससे जो होशियार है।
जी शुक्रिया।
तो इमाम फरमाते हैं कि फातबिर बिमा काना मिन फ़िअलिल्लाह बिइब्लीस इज़ अहबत अमलहु तबी, उसका तवील अमल जो है कि वो जहदहुल जहीद व काना कद अबदल्लाह सित्त आलाफ सना ला युद्रा अमिन सनी दुनिया अमिन सनी आखिरा, कि अगर जिसको कह रहा था कि कोई साहब ने जो कैलकुलेट किया था कि अगर जिस तरह बाज मिलता है कि आखिरत का जो एक दिन है जो वो 50,000 साल के, दुनिया के 50,000 साल के बराबर है, आखिरत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल, अगर ऐसा हो, अगर इसको हम उस कैलकुलेटर से समझ कर पाएं, तो किसी ने इसको हिसाब किया तो अगर 6,000 साल को उसमें आप करते हैं तो 360 दिन का अगर एक एवरेज लिया जाए, कि जो ना 355 डेज को लिया जाए ना 365 को लिया जाए, तो तकरीबन 2 बिलियन और समथिंग जो वो जो फिगर आ रही थी, इतना लंबा जो अरसा है, 2 बिलियन साल दुनिया के, आप किसे कहते हैं, तो इतने सालों, आप इंसान सोचना चाहे जरा सा आंखें बंद करके, वो उसने सोच भी नहीं पाएगा कि कितना लंबा अरसा, इतना लंबा अरसा जो है वो इमाम उसको कहते हैं कि जो यही जिसने इतनी ज्यादा जो है वो खुदा के बारगाह में जो सजदे किए हो और इबादत की हो, उसका एक अमल जो है वो एक अमल, लेकिन क्या था, उन तमाम चीजों पर भारी था। यानी असल ये खुदा के मुकाबले में कोई आ जाए तो खुदा इस चीज को असल पहली जो लाइन में जो बयान किया इस खुतबे के अंदर, कि वो इज्जत और किबरियाई की रिदा खुदा ने अपने लिए मखसूस की है। असल खुदा किसी से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इस रिदा को पहनने की कोशिश करे। असल ये ममनू, जिसे कहते हैं रेड जोन है, किसी को भी जो है उसके इस जोन के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। और शैतान ने वो काम करना चाहा और इस जोन के अंदर दाखिल होना चाहा, और खुदा ने उसका एक लम्हे के अंदर जो है उसके तमाम जो उसके ऊपर जो है क्या हो गया, उसके अमाल जो है उसको एहबात हो गया, बातिल हो गया। इज अहबत अमलहु तवील व जहदहु जहीद व कान कद अबद अल्लाह 6,000 सना لا يدرى من سني الدنيا ام من سني الاخره ان كبر ساعه واحده، कि सिर्फ एक लम्हे की जो गुरूर था, एक लम्हे का जो तकबर था, उसने सब पे जो है पानी फेर दिया। فمن ذا بعد ابليس يسلم على الله بمثل معصيته، तो अब इबलीस के बाद जो है, यानी कौन है जो इस तरह से, यानी हम अगर अपने आप को कंपेयर करना चाहें तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। हम अगर हम देखना चाहें कि हमारी इबादत तो असल किसी खाते में नहीं आती, तो अब जो है वो ऐसा कोई कह सकता है कि हाँ मैं ये काम करूंगा तो महफूज रहूंगा, मैं खुदा के इस अजाब से जो है महफूज रहूंगा। असल जब उस शख्स ने जो है वो 6,000 साल दुनिया या आखिरत की इबादत की, उसको खुदा ने जो है वो नहीं बख्शा और उसके लिए किसी किस्म की रियायत नहीं की, तो क्या हम अपनी छोटी सी जो है वो चंद जो है उसकी दिनों की इबादत पे ये इतराएं और ये सोचें कि हम जो अगर तकबर करेंगे और हमारे जहनों के अंदर ये गुरूर और ये खन्नास आ जाएगा तो हमें खुदा बख्श देगा? नहीं, खुदा को जो है क्या किसी के साथ कोई रिश्तेदारी है? खुदा को किसी के साथ कोई वो है कि आपको साथ वो काम नहीं होगा और इब्लीस के साथ फकत खुदा ने काम किया? नहीं, कल्ला मा कान अल्लाह सुबहानहु लियुदखिलल जन्ना बशरन बिअम्रिन अखरज बिही मिन्हा मलकन। ये कैसे हो सकता है? हरगिज मुमकिन नहीं कि जिस जुर्म की वजह से खुदा ने मलक को, यानी वो शख्स जो कि मलाइका की सफ में था, एक ऐसे शख्स को जो है अपने उस दरगाह से बाहर निकाल दिया, तो क्या उसकी वजह से वो इंसान को जो है वो फिर भी जो है समल को करने के बाद जन्नत में दाखिल करेगा? सन सोच सकता है इंसान का ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो? तो वाकई यानी बहुत ही वाजे और कितना जिसे कहते हैं बलीग और कितना खूबसूरत जो इमाम अलैहिस्सलाम का जो तरीका है, जो बलागत, इसीलिए इस कहते हैं कि वो अपने पीक के ऊपर उसकी जो बलागत है। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कैसे, सोचो जरा क्या हो सकता है कि खुदा तुमको तो इस बात को जो है वो छूट दे दे, लेकिन शैतान को जो है वो इतनी इबादत करने के बावजूद भी एक लम्हे के अंदर जो बाहर निकाल दे। इन हुक्मुहु फी अहलिस समाए व अहलिल अर्ज लवाहिद, उसका जो हुक्म है वो दुनिया और आखिरत वालों के लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ और हुक्म था और तुम्हारे के लिए कुछ और हुक्म होगा। वमा बैन अल्लाह व बैन अहद मिन खल्क़िही हवादतुन फी इबाहत हिमन हर्रमहु अलल आलमीन। और ऐसा नहीं कि खुदा के लिए जो है वो, यानी एक ऐसी चीज जिसकी वजह से उसने खुद उसके साथ कुछ और काम किया और तुम्हारे साथ जो है वो किसी और चीज को जो है वो कोई और बर्ताव किया जाए। उसका जो हुक्म जो है वो आसमान और जमीन वालों के लिए जो है वो एक जैसा है, और तुम्हारे खुदा से कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, कोई खास ताल्लुक नहीं है कि जिस चीज को उसको तुम्हारे लिए एक चीज को हलाल कर दे और जिसको उसने तमाम दुनिया वालों के लिए जो है बाकी आलमीन के लिए जिसको उसने हराम करार दिया। ये इस खुतबे का दूसरा हिस्सा था। यहाँ पे खलकत इंसान की तरफ जो है वो दोबारा से तस्करा होता है और शैतान की इस अमल की जानब जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम तवज्जो दिलाते हैं, ताकि इंसान इस तकब्बुर से और इस गुरूर के दाम है, जो जाल है, जो शैतान जो है वो लोगों को इसके अंदर मुब्तला करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? उसी हसद की वजह से, उसी तकब्बुर। अब जबकि शैतान गिरफ्तार हो जाता है और देखता है कि मैं तो इस दरगाह इलाही से जो निकाल दिया गया, अब चाहता है कि कोई भी इस रास्ते के अंदर जो है कोई भी कामयाब ना हो पाए, कोई भी जो है खुदा का कुर्ब इख्तियार ना कर पाए और सबको जो है गुमराह करने की कोशिश करता है। فرماتے ہیں کہ فحذروا عباد اللہ عدو اللہ ان یؤذیکم بدائه وان یستفزکم بندائه وان یجلب علیکم بخیلہ ورجلہ. بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگ، یعنی واقعی ایک تو اس کو، ان تمام کلمات کو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں اس شب ضربت امیر المومنین کے اندر، کہ امام علیہ السلام ہم سے جو ہے ڈائریکٹلی ہم میں سے ایک ایک کو جو جو یہ خطبہ پڑھ رہا ہے اور آئندہ آنے والی نسل جو بھی اس کو مطالعہ کرے گا، اس کی قرات کرے گا، سب سے امام علیہ السلام جو مخاطب ہیں. صرف یہ کوفہ کے ان لوگوں کے لیے مخاطب نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر، ان کے اختلافات کو دیکھ کر، جن کے اس تعصب کو دیکھ کر، جن کی اس دوبارہ سے جاہلیت کے زمانے میں پلٹ جانے کو دیکھ کر امام علیہ السلام ان سے مخاطب نہیں، ہم سے ایک ہم مجھ سے جو امام علیہ السلام جو اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں. بس اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں مختلف طریقوں سے جو ہے امام علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جن کو رسول خدا یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اور علی جو ہے اس امت کے لیے کیا ہیں، باپ کی مانند ہیں، اس امت کی جو ہے وہ اب ہیں. تو ایک باپ جو ہے اس طرح سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ خطاب کر کے کر رہے ہیں. اگر ہم واقعی اس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں تو اس انداز سے اس خطبے کو انسان پڑھے اور غور کرے اور اپنے اندر ان اس ریشے کو، اس روٹ کو جو تمام برائیوں کی جو جڑ امام علیہ السلام قرار دے رہے ہیں، اس کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیز نہ ہو. بہت چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان جو ہے جس ظاہر کے اندر متواضع ہوتا ہے، اس کے اخلاق کے اندر، اس کی جو ہے رفتار کے اندر، اس کے اعمال سے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، لیکن وہ بعض خاص مواقع پہ وہ تکبر جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی جو نیتوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، اس کے جو مختلف جس جو اس کے اعمال کی جو بیس ہے اس کو ممکن ہے جو ہے بعض دفعہ انسان کے سامنے جو ہے وہ آیا ہو جائے، واضح ہو جائے، اور وہاں پہ جو ہے خدا مختلف طریقوں سے امتحان کرتا ہے، انسان کا آزمائش کرتا ہے، اور وہ جو اندرونی جو چیزیں ہیں وہ جو ہیں پھر باہر آتی ہیں، سامنے آتی ہیں. تو انسان جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ جس کو امام علیہ السلام اتنا زیادہ اسے کہتے ہیں بہت زیادہ شفیق کوئی ہو، ایک باپ ہو کہ جو بہت اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر اس طرح سے اس محبت کی وجہ سے کہ جو اس کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے، اس محبت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ہم سے کہہ کے جا رہا ہے کہ دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت جو ہے میرے یہ تم سب جو میری اولاد کی مانند ہو اس شیطان کے اس دام میں آ جاؤ، اس کے اندر گرفتار ہو جاؤ. فرماتے ہیں فاحذروا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اس چیز کے اندر اس بہت زیادہ اس دشمن سے، کسی سے جو ہے وہ حذر میں رہو، ڈرو، عباد عدو اللہ اس یہ خدا کے دشمن سے جو ہے فاحذروا اس سے جو ہے پرہیز کرو، اسے ڈرو. ان یؤذیکم بدائه کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اسی دا کسے کہتے ہیں بیماری، جس مرض میں وہ مبتلا تھا، جس بیماری میں وہ مبتلا تھا، اس تکبر اور تعصب کی بیماری میں، ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی جو مبتلا کر دے. وَاِن يَسْتَفِزَّكُم بِنِدَائِهِ اور کہیں تم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کی آواز کی طرف جو ہے وہ کھینچتے نہ چلے جاؤ، اس کی طرف جو اٹریکٹ نہ ہو جاؤ. وَاِن يُجْلِبَ عَلَيْكُم بِخَيْلِهِ وَرِجْلِهِ اور ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر حملہ کر دے اپنے اس پورے لشکر کے ذریعے سے، اس کے پاس جو عوان و انصار موجود ہیں وہ شیطان چاہے وہ جن میں سے ہو چاہے انس میں سے ہو، جو اس کے لشکر قرار پاتے ہیں، اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. شیطان اکیلا تو نہیں ہے، پورا اس کی جو ٹیم ہے، ایک بہت بڑی بلا کر جو ٹیم ہے اس کے ساتھ، وہ کہیں تم پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اسی ذریعے سے جس میں وہ خود مبتلا ہو جس بیماری میں، اس بیماری کو کہیں تم تک منتقل نہ کر دے اور اس دام میں تم کو نہ پھنسا لے. فرماتے ہیں فلا امری یعنی میری جان کی قسم. کتنی بڑی امام علیہ السلام جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں کہ میری جان کی قسم. اگر ایک شیعہ جو ہے واقعی نے سوچے کہ امام علیہ السلام اپنی جان کی قسم کھا کے اس سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو واقعی اس پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. فتح العمری لقد فوق لکم سہم الوعید، فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم اس نے تمہارے لیے جو ایک کیا کام کیا ہے، جس طرح سے کوئی تیر کمان جو تیر انداز جو ہوتا ہے، جو تیر چلاتا ہے وہ اپنی کمان کے اندر کس طرح سے تیر کو جو ہے پہلے کھینچتا ہے اور پھر جو ہے اس کو نشانہ لیتا ہے اور اس کو جو ہے نشانے پہ جو ہے وہ اس سے حملہ کرتا ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ الْوَعِيدِ وَأَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک تیر ایک نارمل طریقے سے انسان، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تیر چلانے والا ہے جو شیطان ہے جو تمہارا جس نے نشانہ لیا، کس طرح سے کہ اس کمان کو شدید طریقے سے کھینچا ہے، یعنی جو حملہ ہے جس سے جو تیر نکلے گا اس شدید طریقے سے بہت سرعت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہوگا اگر کسی کو لگے گا. یعنی شیطان کا حملے کو تم آسانی سمجھنا کہ ہاں شیطان نے حملہ کر دیا اور ہمیں جس دام میں جو ہے اس جال میں پھانسنے کی کوشش کی تو اس میں سے ہم جو ہے آسانی سے نکل جائیں گے، نہیں، یہ حملہ شدید ہوگا، یعنی اگر اس دام میں تم پھنس گئے تو نکلنا مشکل ہوگا. فرماتے ہیں میری جان کی قسم अमीर उलमोमिनीन कह रहे हैं, मेरी जान की कसम, इसने तुम्हारे लिए शरंगेजी के तीर को जो है किसमें, इस चिल्ले कमान के अंदर जो है वो जोड़ लिया है, और कमान को जोर से खींच लिया है, बहुत शिद्दत के साथ खींच रहे हैं, और तुम्हें बहुत नजदीक से निशान है। ये भी अजीब है, बात है कि बहुत नजदीक, ऐसा नहीं तुम शैतान को दूर ना समझो कि जो है, नहीं बहुत तुम आसानी से उसके रीच में हो, यानी अपने आप को ही ना समझो कि हम तो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दीनदार हैं, सब कुछ अच्छा है हमारी जिंदगी के अंदर, हमको जो है बड़े बड़े हमारे लेबल लगे हुए हैं कि दीनदार है, मुत्तकी है, नमाजी है, मस्जिद में जाते हैं, रोजा रखते हैं, तमाम चीजों के पाबंद हैं, इनके खानदान जो है ये है, उनके अब्बा और अजदाद ये थे, तमाम चीजें अलकाब ना, तुम बहुत ज्यादा उसकी रीच में, नजदीक है तुमसे। वह अगर अकेलेकुम मिन नज़ शदीद रमाकुम मिन मकान करीब, उसने जो निशाना लिया है बहुत नजदीक से निशाना लिया है, यानी उसमें जो है वो ये ना समझो कि खता पे चला जाएगा निशाना, क्योंकि किसी ने दूर से निशाना लिया हो आप कहें कि वो तो मुझको नहीं लगेगा, नहीं बहुत मकान है करीब से। फकाल रब बिमा अगवैतनी लउज़ै लउज़ैन ल उज़ैयनन लहुम फिल अर्ज़ वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और खुदा ने उससे क्या कहा, ए खुदा मुझे, यानी खुदा से उसने मोहलत ली और कहा कि मुझे तो अब इनको, मैं इनको बहकाऊंगा, और खुदा नहीं, शैतान ने हतमी जैसे कहा है कि ये हतमन ये काम मुझे करना है, और मैं काम करके रहूंगा और उनको अगवा करूंगा, उनको बहकाऊंगा, और उनके लिए क्या करूंगा, इन चीज़ों को जीनत दूंगा, उसके दुनिया को, उसके अतराफ़ को, इन तमाम चीज़ों को उसके लिए इस तरह से जीनत और आरास्ता बना के पेश करूंगा, उसके गुनाहों का आरास्ता बना के पेश करूंगा, और उसके जरिए से उनको गुमराह करूंगा, वल उग़वियन्नहुम अजमईन, सबको जो है मैं बहकाऊंगा, फज़ फन बेग़ैब बिन बईद, हालांकि यानी जब ये कह रहा था इसको, उसको मालूम नहीं था कि वाकई, यानी उसने दफा देखा कि मैं काम करूंगा, कज़फ़न बग़ैब जिसे कहते हैं कि अंधेरे में जो एक तीर उसने चलाया कि मैं काम करूंगा और सबको जो है गुमराह कर दूंगा, वो रजमन में ज़न्निन गैर मुसीब, और एक ऐसी चीज जो मालूम नहीं है कि वाकई ऐसा हो भी सकेगा कि नहीं हो सकेगा, लेकिन शैतान ने क्या कहा कि मैं सबको जो है वो जो तेरे रास्ते की तरफ तरफ आने जाएंगे इन सबको जो है मैं गुमराह करने की कोशिश करूंगा, और इस मरज में मुबतला करने की कोशिश करूंगा, सब पे जो है कोई निशाना बनाऊंगा, इस तरह से खुद कह रहा है कि जैसे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मुबतला हो जाएंगे, सारे ही जो है वो उसकी बातों में आ जाएंगे, सारे उसकी इस दाम में फंस जाएंगे। तो ये शैतान यहाँ पे क्या करता है, एक अंधेरे में एक तीर चलाता है, रजमन बिल गैब, रजमन बिल जन्न गैर मुसीब, जिसको मालूम नहीं कि वो वाकई उसके निशाने पे लगेगा भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्यों सलाम इस तरह से कह रहे हैं कि ये, यानी शैतान ने तो एक कह दिया सही, शैतान ने कहा मैं सबको काम करूंगा, अब हम ऐसा ना हो कि उसकी बात को सच्चा कर दें, उसने तो अंधेरे में एक तीर फेंका था, उसने तो जो ऐसे तुक्का लगाया था कि जिसे कहते हैं कि मालूम नहीं क्या सो सब लोग, उसके गारंटी तो नहीं है कि शैतान की बात जो है, चूंकि शैतान ने कह दिया है मैं सबको गुमराह करूंगा, बस अब जो है मुझे गुमराह होना ही नहीं, ये तो मेरे इख्तियार में कि मैं गुमराह हूं या ना हूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम अपने अमाल के जरिए से, अपनी इस जिंदगी के जरिए से जो तुम गुजार रहे हो, उस इख्तियार के जरिए से तुमको खुदा ने दिया है, तुम शैतान की बात को सही साबित कर दो। तो तुम क्यों शैतान की बात को सही साबित करते हो, वो तो उसने ऐसी अंधेरे में तीर लगाया कि हाँ मैं सबको गुमराह कर दूंगा, लेकिन सद्दकहु बिही अबनाउल हमीया, लेकिन क्या होता है, होता यह कि ये जो लोग गुरूर के अंदर आ जाते हैं, तासुब की जो जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने हक को मेयार नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने इन रिश्तेदार ताल्लुकात को, रिश्तेदारियों को, खानदान को, कबीलों को, पार्टियों को, बार बार इन अल्फाज को क्यों दोहरा रहा हूँ कि देखें हमारे साथ भी है मसला, यानी ये हमारी जिंदगी का एक जिंदा मसला है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो हमारी जिंदगी के अंदर ना हो, और अगर ऐसी कोई चीज होती तो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी एजाम में इतना ज्यादा ताकीद ना करते उसके ऊपर, बस मौजूद है हमारे, देखते हैं कि हम लोग किस तरह से फैसले करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और जो है किस तरह से किन चीज़ों को फोकस देते हैं, किन चीज़ों पे जो है वो उनको बेस बनाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तमाम चीजें हमारी जिंदगी के बहुत ज्यादा उसके अंदर, हमारी जिंदगी घिरी हुई है तमाम चीजों के अंदर, इसलिए जो हम इसको फोकस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सद्दकहु बिही अबनाउल हमिया, लेकिन ये जो औलाद है, जो इंसान है, उन्होंने क्या किया, इसी के जरिए से जो है उसकी बात को तस्दीक कर देते हैं, और गुरूर के अंदर जो मुबतला होते हैं तो वही जो शैतान चाह रहा था वही हो जाता है, और जो कहता है कि हाँ मैं बहकाऊंगा तो ये बहक जाते हैं। वह इख्वान असबिया, ये जो असबियत और इस के ये लोग हैं जो जो जिनकी फिक्र के अंदर तकबर पाया जाता है, तासुब पाया जाता है, उसकी तस्दीक कर देते हैं। वह फुरसान उल किबर है, और ये जो शाह सवार हैं इन चीज़ों के, इस किबरियाई के, तकबर के, वह फुरसान उल किबर है, वल जाहिलियत है, हत्ता इज़न क़ादत लहुल जामिहतु मिनकुम वस्तहकमत التماعية منه فيكم فنجمت الحال من السر سر من السر الخفي الى الامر الجلي، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم جب اس طرح سے اس کی بات میں آ جاتے ہو اور اس تکبر کے جال میں اور اس جاہلیت کی جو تعصب تھا اس کے اندر آ جاتے ہو تو تم اس کے مطیع ہو جاتے ہو، اور جب مطیع ہو جاتے ہو تو اب جا کے पहले तो मरियम उसने जो है फकत एक जो है वो रजमन बिलगैब किया था, एक अंधेरे में तीर लगाया था, उसको मालूम नहीं था कि वाकई लोग मेरी इताअत करेंगे। लेकिन जब वो देखता है कि हाँ इनके दिलों के अंदर वो जो तासुब है, वो जो गुरूर है, वो जो तकबर है, वो इनके उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ माइल हो रहे हैं और जाहिलियत के जो रसूमात हैं उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, तब उसको जो है उम्मीद हो जाती है कि हाँ यहाँ पे जो है हमला किया जा सकता है, यहाँ पे जो है वो मैं तो ऐसी कह दिया था एक बात, लेकिन ये तो वाकई ऐसा है, यहाँ तो वाकई काम किया जा सकता है, यहाँ तो वाकई सरमाया गुजारी की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जब शैतान ये देखता है यहाँ पे, फिर तेज मोहकम तरीके से जो है वो उसके अंदर फिर शैतान जो तमा करता है, कहता है कि हाँ यहाँ पे वाकई अगर इस शख्स को जो है बहकाया जाए, इस शख्स के अंदर वसवसा किया जाए, तो यहाँ पे इंसान शैतान को जो है वो कामयाबी हो सकती है। तो तुम में जो है वो शैतान तमा करने लगता है। शैतान जब उन ऐसे दिलों के अंदर जो जरा सा भी इसको जगह देते हैं और जरा सा भी अपनी उस तकबर और इन चीजों को दिखाते हैं, तो शैतान को तो उससे ज्यादा उसके लिए क्या बेहतर चीज होगी, उसका हदफ ये था कि जो है वो लोगों को गुमराह करे। तो ये बात जो है वो जब तक जो चीज पर्दे में थी उससे चीज निकल के बाहर आ जाती है, और शैतान के लिए वो एक बहुत ज्यादा वाजह से जो टारगेट था उसके लिए वो सामने उस तरह से अपने आप को सामने पेश कर देते हैं। वो जो खफी जो चीज थी अब तक जो राज में थी, जो सिर में थी, इंसान के दिलों में थी, वो आया हो जाती है। तो क्या होता है, इस्तफ़हल सुल्तान हो अलैकुम, तो वो उस अपने जो इकतदार है, अपना जो कुवत है, उसके जरिए से तुम पर अपने यानी जो हुकूमत करना चाहते हैं वो उसको मुहकम कर लेता है और तुमको बिल्कुल अपना मुती बना लेता है। इस्तफ़हल सुल्तान अलैकुम व दलफ बि जुनूदिही नहवकुम, और पूरे अपने लश्कर के साथ जो तुम, जैसे देखें क्या होता है दुश्मन किसी जंग के अंदर, जब तक जो है सामने वाला जो है वो कवि होता है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक ऐसी कुव्वत होनी चाहिए कि जिसके वजह से कभी दुश्मन को ये मजाल ना हो कि हमारी तरफ जो है वो मैली आंख से देखे और हम पे हमला करने की कोशिश करे। इस तरह की चीजें हम सुनते रहते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर कि हमको इसलिए जो है कभी होना है, और है बात भी ऐसी है, हर जंग के अंदर इसी तरह से होता है कि इंसान जो है वो अपने आप को कवि करता है ताकि उस पर कोई हमलावर हमला ना हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, जब तक शैतान जैसे ही देखता है कि नहीं यहाँ पर अब जो है एक कोई कमजोर एक नुक्ता मुझे नजर आ गया, तो फिर वहीं पर जो है वो हमला करता है। और जब तक आप अपने तमाम उस किले को मजबूत रखते हैं, जब तक जो है वो शैतान को अंदर रखना करने की जो है वो जगह नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही उसको कोई चीज नजर आती है कि नहीं यहाँ पे लूज पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऐसा जो है कोई होल है, यहाँ पे कुछ सुराख है जिससे जो है वारिद हो सकता है, तो क्या करते हैं, अपने पूरे जो ताकत है, अपने पूरे जो जुनूद है, अपना जो पूरा लश्कर है, उसके साथ तुम्हारी तरफ जो है वो रुख मोड़ लेता है और तुम्हें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर दिल के अंदर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करता है। और दलफ अब जुनूद ही नहवकुम व अख महुकुम वलजातुल्ल व अहल्लुकुम व रतातिल कत्ल, और तो क्या करता है उसके बाद तुम्हें जो है जिल्लत के तरफ जो है वो, यानी जब तुम उसके मुती बन जाते हो तो क्या हो, जब इंसान जो खुदा की इताअत को छोड़ के शैतान की इताअत के अंदर चले जाएगा, तो मालूम है कि वो जिल्लत की तरफ जाएगा, वो पस्ती की तरफ जाएगा, वो जिल्लत की जो है तरफ ले जाता है और तुम्हें एक ऐसे भंवर के अंदर जिसमें कत्ल है, कत्ल गारत और खून, जब इंसान देखें जब तासुब की इस वादी के अंदर आ जाता है, जो इस्लाम से आने के पहले के जो हालात थे जाहिलियत के जमाना, उसके अंदर हमको क्या बताया जाता है, वो जो जाहिलियत है, जाहिलियत है उस जमाने की जाहिलियत जो कि कदीमी जमाने की जाहिलियत थी, उसके अंदर क्या था, यही खून खराबा, यही जो है जुल्म सितम, ये तमाम चीज हमको मिलती है। और जो आज की जो जाहिलियत मॉडर्न है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी ये चीज, उस जमाने में अगर जो है वो हजारों लोगों को मारा जाता था तो आज लाखों और लोगों को जो है मारा जाता है, जंगों के अंदर जो है वो हजारों के बजाय लाखों लोग मारे जाते हैं। तो फर्क कोई बस इस स्केल का फर्क, पहले
मेरा
जो है वो
एक मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो शैतान था, मतलब इसके जाहिद, आरिफ, वली, तकी, इसके इतने सारे नाम थे आसमानों के ऊपर, तो जब ये सात आसमान की सैर कर रहा था तो जो लोहे महफूज के ऊपर लिखा हुआ था कि हमारा एक ऐसा बंदा होगा जिसको हम नेमतों से माला माल कर देंगे और जमीन से आसमान पे पहुंचा देंगे, तो इसके बाद हम इसे खास काम पर मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के अमर की तो किसी को भी खबर नहीं होती, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह ताला, जब उसने ये लिखा हुआ देखा था लोहे महफूज पे, तो उसने ये भी तो कहा था ना कि ऐसा एहसान फरामोश आखिर होगा कौन। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो जाहिद भी था, आबिद भी था। जब अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया हजरत आदम को सजदा करने के लिए, तो उसके इल्म ने, जो वो इतना आलिम था, तो उसके इल्म ने उसको ये क्यों नहीं बताया कि लोहे महफूज पर जो ये लिखा हुआ था कि हम उसे एक काम पर मामूर करेंगे और वो उसको इनकार कर देगा। तो यानी उसके, यानी वो इतना बड़ा आलिम होकर ये भी नहीं समझ सका कि खुदा ने मुझे हुक्म दे रहा है सजदे का, तो मैंने तो ये लोहे महफूज पे पढ़ा था और अल्लाह अल्लाह ताला से कहा था कि ऐसा एहसान फरामोश कौन होगा। तो इट मीन्स कि जब तकब्बुर आता है तो उसकी तमाम, जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है तो ये तमाम इल्मी सलाहियतें क्या खत्म हो जाती हैं बिल्कुल ही, यानी
बिल्कुल ऐसे ही, यानी जिससे कहते हैं इंसान जो है वो इससे अंधा हो जाता है, यानी उसके अंदर आके जो है वो जब गलत उसके अंदर वो चीज़ आ जाए और जो चीज़ वो देख भी रहा है कि हाँ ये गलत है, लेकिन इसी काम को जो अंजाम देता है। मसलन क्या हम अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर नहीं देखते कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमको मालूम होते हैं कि ये गलत है, उस काम को नुकसान होगा और इसकी ये बुराई है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इसको अंजाम दे रहे होते हैं, देते हैं नहीं देते। इंसान जो है वो जानबूझ के जो है वो तमाम चीज़ों के बावजूद उसको
जी
अंजाम देता है। या हमको तारीख के अंदर जो है बड़े बड़े वो लोग जो के मसलन फर्ज करें कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में जो फुरआन आया और जो है वो उसने इताअत नहीं की, और जबकि वो देख रहा था कि सब कुछ ये तमाम जो है ये मेरे पास जो कुदरत है वाकई नहीं, मैं तो जो है एक फकत एक मैंने ढोंग रचाया हुआ और वाकई मेरे पास कोई ताकत नहीं है, असल ताकत तो उसी की जिसने खल किया, लेकिन जो है वो तमाम निशानियों को देखने के बाद इनकार कर रहा था। या हम अपने इसी उम्मत के अंदर देखें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कजिया है, या हम जो है उससे पहले सकीफा को देखें, या तमाम चीजों के अंदर क्या उम्मत को मालूम नहीं था क्या वो लोग जो के सरबरा थे, चलो हम कहें बहुत ज्यादा लोग जो अवाम थी शायद वो जो है वो किसी उसके अंदर आ गई और उनको बहुत सी चीजों को उन्होंने फरामोश कर दिया या अपने किसी और चीज में बह गई, लेकिन वो जो लीडर्स थे क्या उनको इल्म नहीं था क्या क्या है और क्या बात है। या इसी तरह से इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो मसलन इबन ये आज की रात जिनके हम तस्करा करें हमारे अमीर मोमिनीन का, इन्होंने खुद जो है इत्तला नहीं दी थी इब्ने मुलजिम को, ये तमाम चीजें जो है लोगों को मालूम होती हैं, लेकिन जो है बहुत सारी चीजों के अंदर इतना ज्यादा इंसान जो है वो जैसे कहते हैं कि अंधा हो जाता है और इस अपनी हविस मुख्तलिफ किस्म की हविस जो होती है इसके अंदर ख्वाहिशात जो है कभी किसी को एक तकबर के अंदर आके, कभी किसी और वजह से आके, कभी हसद के अंदर मुबतला होके इंसान जो है वो इन तमाम चीजों को देखते हुए भी जो है वो उस दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है। और सारी खूबसूरती जो है इस इम्तिहान की वो यही है कि इंसान जो है इस तरह से खुदा ने इस पूरे सिस्टम को बनाया है कि उसके अंदर हमेशा से इख्तियार का जो है वो पहलू रखा है। अगर हालात इस तरह से खुदा बना दे जिस तरह से इमाम इस खुतबे में कहते हैं कि वो कभी भी खुदा जो है बिल्कुल वाज और शफाफ नहीं कर देता कि उस वो तमाम नूर जो है आया हो जाए, वो तमाम चीज़ें वाज हो जाए, कि वो इम्तिहान का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए, नहीं, एक चीज़ रह जाती है, एक अननोन चीज़ खुदा रखता है और वहीं इसी के जरिए से वो जो अंदर इंसान के दिल के अंदर वो जो चीज़ है वहाँ फिर जो है उस जगह पर सामने आती है। और शैतान की भी जो है वो उसके वजूद के अंदर कहीं पर वो छुपा हुआ एक चीज़ होगी कि जहाँ पे वो तकबर जो मौजूद था कि जिसको जो है वो मुमकिन है वो छुपाना चाह रहा हो, उसको जो है वो इकरार ना करना चाह रहा हो, वो उसको जो है वो कह रहा हो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुदा का मुती हूँ, खुदा उसी चीज़ को जो है वो सामने लेकर आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और मेरे मेरी जो इस बारगाह के अंदर जो मुखलिस फकत जो है वो मलाइका हो सकते हैं, वो मुखलिस मखलूकात हो सकती हैं, और जिनके अंदर जरा सा भी तकबर है उनको यहाँ पे मेरी बारगाह के अंदर कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा ही है कि तकबर के अंदर आके और इस असबियत के अंदर आके इमाम हमको यही बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम लोग भी जो है वो इससे इसीलिए इतना ज्यादा अलर्ट करना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत ही मुमकिन खुफिया चीज़ हो, एक खफी चीज़ हो, बहुत छुपी हुई चीज़ हो तुम्हारे दिलों के अंदर, और तुम उसको उस एक ऐसे वक्त पे वो जाहिर हो कि जब जो है वो जिसे कहते हैं पानी जो है सर से गुजर चुका हो, और फिर वो तुम उस वक्त तुम्हें जो ख्याल है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। इंसान ऐसे ऐसे जुर्म कर बैठता है इन्हीं असबियत के अंदर, इन्हीं गलत लोगों की हिमायत के अंदर, जानते हुए भी कि ये बातें हैं, इन सिर्फ और सिर्फ इसी ये जो आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं और इसी मोहब्बत अपने कबीले की पार्टी की रिश्तेदारों की अपनी औलाद की, कि इसके वजह से इंसान बहुत बड़े ऐसे काम कर बैठता है कि जो यानी मगर इंसानों ने जो है अम्बिया का और औलिया का जो कत्ल मगर इसीलिए नहीं किया, मसलन किसी किसी जो है किसी की मोहब्बत में मुबतला हो गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो है उस तक पहुंच जाए, उसकी मोहब्बत में जिसको हासिल हो जाए। इमाम का कत्ल इंसान कोई कर दे इससे जो है बढ़कर जो है कोई, लेकिन क्या होता है जानता है वो कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन इस हद तक इंसान मुबतला हो जाता है अपनी असबियत के अंदर आके, अपनी गलत मोहब्बत के अंदर आके, कि हर ये काम जो है हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि इंसान मुतासिफाने जो है वो अंजाम देता है, और इसीलिए जो है वो अगर ये चीज़ ना होने वाली होती और इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ना पाई जाती तो इमाम कभी भी इतना ज़्यादा इसकी तरफ जो है स्ट्रेस नहीं करते। स्ट्रेस करने का मकसद ये है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा आगाह रहो, होशियार रहो कि तुम हर इंसान जो है इसके अंदर इस निशाने के ऊपर है, जिस तरह इमाम कह रहे हैं कि शैतान ने तुम सबका जो निशाना लिया हुआ है और बहुत नज़दीक से जो निशाना लेता है, जैसे ही ज़रा सा तुम्हारे जहन के अंदर और जो है वो दिलों के अंदर एक खन्नास आ जाए और ज़रा सा भी आ जाए कि नहीं मेरे अंदर कुछ बरतरी है या ये चीज़ें, फ़ौरन जो है वो वारिद होता है और उसके अंदर फिर तुम लोग उस पर दिलों पर जो है कब्जा करने की कोशिश करते हैं।
जी शुक्रिया।
फरमाते हैं कि बात हमारी बात पहुंची थी। तो इस तरह से जो है वो शैतान जो वारिद होता है और इंसान को जलील करके और उसको जो है वो, हाँ तो जाहिलियत के ज़माने में जो बात हो रही थी कि उस ज़माने में किस तरह से कत्ल गारत के अंदर इंसान मुब्तला होता था, और आज भी वही है, फकत उसका जो स्केल जो है वो चेंज हो गया। अब इंसान बड़े पैमाने पर जो है वो कत्ल गारत करता है, किस वजह से? इसी असबियत के अंदर आके, इसी तकबर के अंदर आके कि वो खुदा का मुती नहीं बनना चाहता, उन अहकाम का मुती नहीं बनना चाहता, वो खुद अपनी जो है मनमानी करना चाहता है। फरमाते हैं कि वअउतउकुम इस खान अल जराहत तानन फी उयूनकुम व हज़न फी हुलूकहम हुलूकुम व दक्कन ले मनाखिरकुम व कसदन ले मकातिलकुम व सौकन बे खज़ाइम अल कहरे अल नार अल मुअद्दत लकुम। बहुत ही यानी खूबसूरत यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ताबीर करते हैं। मैं ख्याल में इसी पर हम फिर एंड करेंगे कि क्या करता है शैतान जब देखता है कि हाँ यहाँ पे जो हमला किया जा सकता है, इस शख्स के अंदर कमजोरी पाई जाती है, इसका किला जो है कमजोर है, इसका जो है इसके अंदर एक झुकाव पाया जा रहा है और यहाँ पे मैं हमला कर सकता हूँ, वहाँ पे आता है, क्या करता है? वह औताउकुम इस्खान अल जराहत तानन फी उयूनकुम। सबसे पहले क्या करता है? तुम्हारे आंखों में जो है नेजे जो है चुभो दिए, यानी उसने जो है वो उसके जो नेजे हैं उसके पास जो हथियार हैं, मिसाल तशबीह दे रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम के, सबसे पहले तुम्हें अंधा करता है, यानी इस तकब्बुर की वजह से सबसे पहले तो तुम जो है वो अब तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, यानी उसने दुश्मन ने आके अगर किसी अपने जो मद्दे मुकाबले की आंखों ही पर हमला कर दिया तो यानी उसकी तकरीबन शिकस्त जो है यकीनी है। जब उसको यकीन नजर ही नहीं आएगा कि मेरा दुश्मन है कहाँ, तो कैसे उसका फिर मुकाबला करेगा? तो सबसे पहले जो शैतान करता है इस तासुब के जरिए से, तकबर के जरिए से, इन चीज़ों के जरिए से जब वारिद होता है तो तुम्हें अंधा बनाता है, तुम्हारी आंखों पे हमला करता है, तुम्हारी बसीरत को तुमसे ले लेता है, फिर तुम देख नहीं पाते, देख भी रहे होते लेकिन नहीं देखते, तुम्हें नजर आ रहा होता है कि हक यहाँ ये है अब, लेकिन फिर भी जैसे तुम्हारी आंखों पर जो है पट्टी पड़ी हुई है, तुम उसको इनकार करना चाहते हो, कैसे उसके जो है उससे आंखें बंद करने की कोशिश करते, तुम्हारी बसीरत जो है तुमसे ले ली जाती, तुम्हारी आंखों पर जो उसने वो नेजे जो है वो, देखें कितनी खूबसूरत ताबीर है कि इमाम फरमाते हैं कि सबसे पहले शैतान ये काम अंजाम देता है और फिर तुम्हें जो है वो तुम्हारे हल्क पे जो है वो खंजर चलाने के बाद, और फिर तुम्हें जो है वो क्या करता है जब आखिरी तमाम काम हो गया तो आखिरी मरहला क्या होता है? अब तुम्हें जो है वो जब जमीन पे गिर जाता है, तुम्हारी नाक जो है जमीन पे, जिसे कहते हैं जमीन पे यानी जिल्लत को जो ताबीर करते हैं वहां, कि तुम जलील हो जाओगे, जैसे अब इंसान जो है जिसकी नाक को जो जमीन पर रगड़ दिया जाए, जिल्लत की जो है कलामत बयान की जाती है, ये जलील हो जाओगे अगर तुम शैतान को जरा सा भी जो है तुम मौका दोगे। तो शैतान को नहीं ना समझो तुम जो बहुत ज्यादा वसवसे करता है और तुम्हें गुनाहों की तरफ लेकर आता है, इन चीजों की तरफ कि हाँ तुम तो बहुत बड़ी चीज हो और तुम्हारे अंदर ये चीज है जो दूसरे के अंदर नहीं है और तुम्हें ये मकाम मिलना चाहिए, तुम्हें इस मकाम से क्यों महरूम किया गया, ये चीजें तुम्हारे होनी चाहिए थी और तुम पे जुल्म हुआ है, मुख्तलिफ तरह के वसवसे करता है। तो जब जरा सा ये देखता है, इस तरह से वारिद होता है, तुम्हारी बसीरत को ले लेता है, तुम्हें जो है बिल्कुल जलील करके रख देता है। जिल्लत क्या है? जिल्लत वही है कि कल तक तुम खुदा की इताअत में थे तो कब जो है वो अजीज थे, तुमको खुदा ने जिस तरह से इज्जत अपने लिए करार दी थी इसलिए वो इज्जत को खुदा ने रसूल और मोमिनीन के लिए करार दिया था, आज तुमको खुदा के मुकाबले में जब आ जाते हो और शैतान की इताअत में चले आते हो तो तुमको जो है वो तुम्हारी नाक को जो है रगड़ के रख देता है, तुम्हें जलील कर देता है और फिर तुम्हारे एक एक जोड़ यानी बिल्कुल यानी तुम्हें जो है तहस नहस कर देता है, तुम्हारे जोड़ बंद को जो है वो तोड़ के रख देता है, तुम्हारी नाक में फिर जिस तरह से एक ऊंट को जो है जब जानवर को देखते हैं कि इसको राम किया जाता है तो क्या होता है, उसकी नाक के अंदर जो लगाम डाली जाती है उसमें से उसकी ऊंट के अंदर क्या होता है कि उसकी नाक में वो जो सुराख करके लगाम को वहां से जो है वो किया उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से तुम जो है वो शैतान के कंट्रोल में आ जाते हो, जैसे उसने तुम्हें अपनी तुम पे अपनी लगाम को जो है लगा दिया, कितनी जिल्लत की बात है इंसान के लिए कि इस तरह से जो कोई शैतान के आगे जो है बिल्कुल राम हो जाए, तुम्हारी नाक में जो इस तरह से कहरो कल गलबे की जो नकेल होती है वो डालकर और उसकी तरफ जो आग की तरफ जो है तुम्हें लेके जाता है, और ये वो जो आग जिसको खुदा ने यानी ये जो जहन्नम की जाग है, इस तरह से इंसान उसकी तरफ कितनी आसानी से उसके कंट्रोल में आ जाता है, शैतान के कंट्रोल में, और फिर उसी के मुताबिक जिस तरह जहां तुमको ले जाना चाहता है वहां तुम चलते रहते हो, जिस तरफ जो है वो जाता है कभी इस तरफ ले जाता है कभी उस तरफ ले जाता है, तुम्हें हक के जो मीजान को छोड़ देते हो तो बातिल जो है कभी आज उसके साथ हो कल उसके साथ हो, जो है कोई तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड कोई मेयार हक का मेयार जब छोड़ देते हो तो फिर इस तरफ होते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहते हो और आहिस्ता आहिस्ता तुमको शैतान इस तरह से जैसे कहते हैं हम जो रहा है कभी किसी के साथ है कभी किसी के साथ, कोई इसकी जिंदगी का मेयार हक का मेयार नहीं है, तो इंसान को शैतान इस तरह से अपने कंट्रोल में लेके और जिल्लत के साथ उस जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। असबह आजम फी दीनकुम हरजन हरजन व औरा फी दुनियाकुम कदहन मिन अल्लज़ीन असबहतुम लहुम मुनासिबीन व अलैहिम मुतअल्लिबीन। तो वो क्या करता है तुम्हारे दीन को उन सब से ज्यादा मजरू करने वाला है, और तुम्हारी दुनिया में इन सबसे ज्यादा फितना फसाद की आग भड़काने वाला है जिनसे मुकाबले की तुमने तैयारी कर रखी है। यानी दरकीकत जिनसे तुम किन लोगों के जो है वो जिन लोगों से दुश्मनी रखते हो और उनको अपने लिए बुरा समझते हो, इन सबसे ज्यादा जो है दरकीकत ये तुम्हारा दुश्मन है। हम समझते हैं कि नहीं मेरा दुश्मन वो है, मेरा दुश्मन वो फलां शख्स है। सबसे ज्यादा कौन है तुम्हारा दुश्मन? सबसे ज्यादा ये है तुम्हारा जिसने जो है इस तरह से तुम्हारे लिए दुश्मन, कौन जो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाए, जो खुदा की इत्ताअत से निकाल कर इंसान को जिल्लत की उसके अंदर ले जाए और बिल्कुल अपने आप अपने कंट्रोल में लेके जहन्नम की वादी तक पहुंचाते, उससे बड़ा कोई दुश्मन क्या हो सकता है खुदा के लिए, इंसान के लिए कोई? इमाम कहते हैं कि बाकी जिन लोगों को जो तुम अपना जाहिरी दुश्मन समझते हो, इन सबसे बड़ा दुश्मन हकीकत क्या है? वो शैतान है जो तुम्हारे लिए दुश्मन है। बस इससे जो है दुश्मनी करने में अलर्ट हो इंसान। एक दफा इंसान होता है दुश्मन मालूम है दुश्मन है, लेकिन जो उसके उसको दुश्मन नहीं समझता, जिस तरह हम हमारे इस वक्त भी ऐसा ही कि दुश्मन हमको जाहिरी तौर पे बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम है कि हाँ ये लोग जो है वो हमारे साथ जो सिंसियर नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ उनसे जो है मामले के अंदर अलर्ट नहीं रहते और धोखा खा जाते हैं और जो है वो नुकसान जो हमको पहुंचाते हैं। वो शैतान चाहे वो शैतान इब्लीस वाला शैतान हो या वो आज के जो है वो शैतान अकबर हो कि जो शायद उसका भी उस्ताद है, तो ऐसा नहीं है कि जो है वो शैतान फकत उसी फॉर्म में, नहीं, शैतान है इंस भी हैं, शैतान है जिन भी हैं, हर तरह के शैतान है। इंसान क्या करते हैं, शैतानी इंसान को इस तरह खुदा से दूर करते हैं और जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। इंसान को अलर्ट होना होगा और मालूम होना होगा, इंसान को अपने लिए मालूम करना होगा, हमेशा चौकन्ना रहना होगा कि ये मेरे दुश्मन है, ताकि मैं उनसे उसी तरह से बर्ताव करूं जिस तरह से एक इंसान अपने दुश्मन के साथ करता है, हमेशा उससे जो है वो चौकन्ना रहता है और अलर्ट रहता है। खाल में यहाँ तक की गुफ्तगू रखते हैं ताकि कल जो है वो मजीद इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसको तकमील करने की कोशिश करेंगे। और किसी को सवाल अगर है तो